हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा जमुना तिरवन चारी जमुना तिरवन चारी
हरे राम
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सतस्त्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की स्कंद संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की नित्यलाभविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर सतस्त्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़गोस्वामी प्रभुगण की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा पुण्य श्याम पुण्य श्री गिरिराज गोधन जी महाराज की जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सदर्शन की श्री द्वारिका धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री अयोध्या धाम की गंगा देवी यमुना देवी सरजू देवी की वृंदा देवी तुलसी महारानी की युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्त वृंद की निताय घोर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो आपके इस साल की इस यात्रा के और केवल एक ही दिन शायद बचा, परसों दिन तो जाना ही है रात को शाम के, तो दो दिन ऑफिशियली बाकी है। दो दिन में एक ही जागा और बाकी रह गया। आपके तीन जागा था, चित्रकूट अयोध्या नैमिषारण्य, चित्रकूट आप कर चुके हैं, अयोध्या भी लगभग हो चुका है, अब रात्रि शयन करके सुबह उठकर प्रयाण करना है और काल एक स्थान जा करके परसों शाम को ट्रेन पकड़ना है। तो यात्रा को अंग्रेजी में सफर कहते हैं, सफ़र करना कहते हैं ना। जब कहते हैं सफ़र पर सफरिंग तो होना ही है, नहीं तो सफ़र कैसा होगा। सफ़र करेंगे सफरिंग का बिना ये तो संभव ही नहीं है। और उसमें भी इतने अध्यात्म में बढ़े चढ़े, इतने वैकुंठ की साक्षात स्थान श्री अयोध्या नगरी, यहाँ पहुँचना के लिए तो कुछ तो तपस्या तो आवश्यकता है। बिना तपस्या से यहाँ अभी तक तो कोई प्राप्त हुई नहीं, तो हम लोग फिर थोड़ा तपस्या बिना कैसे आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा रात्रि जागरण का करना पड़ा, और केवल जागरण के नहीं, जागरण करने के बाद भी जो धकचक धकचक जो यात्रा है उस यात्रा के सफ़र के साथ, तब जाकर के सुबह सुबह अयोध्या के पवित्र भूमि के स्पर्श किए, अयोध्या में सूर्य उदय दर्शन किए, सरज नदी में स्नान किए और प्रसाद और दर्शन सब किए। तो ये सब बिना तपस्या के फल नहीं है, इतने तपस्या तो जरूरत है ही है। तो ये अयोध्या नगरी ऐसे शास्त्र पुराण से प्राप्त होता है उसका परिचय, कि ये सृष्टि में सबसे प्रथम मनुष्य समाज के जो अधिष्ठात्रु अधिष्ठित देव श्री मनु महाराज, मनुष्यों के राजा जिनको ब्रह्मा ने दायित्व दिए, उन्होंने समाज के लिए कहीं एक जगह में रहेंगे, अपने राजधानी करेंगे, मनुष्य समाज को परिचालना करेंगे। इसलिए धरती पर कोई एक जगह जब ढूंढे तब उनको हरे कृष्ण हरे कृष्ण जब जगह ढूंढे तब उनको इसी जगह दिया गया। तो सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य के लिए जो राजधानी था, कैपिटल था, वो यही था अयोध्या। सबसे इस भूमंडल पर सबसे पुराना कैपिटल है अयोध्या नगरी, जो मनु महाराज ने स्थापना किए थे। मनु की राजधानी था अपना। मनु आप जानते हैं मनुष्यों की सबसे शुरुआत की अध्यक्ष है, ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो उन्होंने अनेक दिन तक अपने भवन बृहस्पति मृत था ही, लेकिन उनके ऑफिस अयोध्या में रखे, इस धरती पर, इस भूमंडल पर अपना ऑफिस यहाँ रखे परिचालना करने के लिए। तो अनेक वर्ष तक ये अपने सुमन संभालने के बाद उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उसको दे दिए। तो इक्ष्वाकु ने अपने वंश परंपरा में उसको मेंटेन किए और इक्ष्वाकु महाराज के वंश परंपरा चलते लगा। ऐसे वर्णन आता है कि उनके वंश में 62 पीढ़ी में 62 पीढ़ी के बाद इसी वंश में, इस स्थान में परात्पर परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने संपूर्ण परिकरों के साथ, चतुर्व्यूहों के साथ यहीं प्रकट हुए थे मनुष्य रूप में। मनुष्य आकार धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इस रूप में महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। महाराज दशरथ यहाँ दृष्टि यज्ञ किए। आप लोगों को पता है दशरथ महाराज के पुत्र नहीं हुआ करते थे, यद्यपि उनके 3 रानी थे, पुत्र नहीं हुआ करते थे। तो बड़े चिंतित रहे, हजारों हजार वर्ष व्यतीत हो गया। तो अंततः उनके मंत्री सुमंत कहे कि ऐसे है, आपके जो बेटी एक थे, पहले दशरथ महाराज के बेटी थे, उनका नाम था शांता, उनको उन्होंने अंग महाराज बिहार को एक राजा को दे दिए थे दत्तपुत्री के रूप में। बोले उनके शांता के वर है मुनि ऋषि सिंह, उनको बुला करके अगर कोई दृष्टि यज्ञ करेंगे तो आपके संतान होंगे। उसके बड़े कथा है, आप सुने होंगे ऋषि सिंह का, किस प्रकार अंग राज्य में अकाल पड़ा था और ऋषि सिंह मुनि को लाया गया। विभंडक पुत्र बड़े मुश्किल था उनको लाना। उनको लाए जब अंग राज्य में तो बारिश होने लगा। तो फिर उनको शांता के साथ विवाह करके उनको घर ज्वाई करके वहीं रखे। तो उन्हीं को बुला करके महाराज दशरथ यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ किए थे। तो उनके 4 पुत्र सुंदर प्राप्त हुए। जो 4 उनको यज्ञ चारों प्राप्त हुआ था, उनको 3 रानी में उन्होंने इस प्रकार बंटन किए, जिससे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र और 2 उनके 2 असिस्टेंट इस प्रकार प्राप्त हुए। तो ये अयोध्या नगरी वैकुंठ के एक पार्ट है और इसमें मनु महाराज जब थे तभी तक सरजू नदी नहीं थी यहाँ, और ये 84 क्रोश विशिष्ट है। बाद में इक्ष्वाकु महाराज जब राज्य करने लगे, उनको लगा कि राज्य सब प्रकार से समृद्ध है, सब प्रकार से जो भी प्राकृतिक संपदा होना चाहिए सब है, लेकिन नदी नहीं है। तो उन्होंने उनके कुलगुरु वशिष्ठ महर्षि को प्रार्थना की, गुरु जी ये कमी क्यों रहा, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, एक नदी का व्यवस्था होना चाहिए। तो वशिष्ठ ने राजा के कहने पर उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को बोले, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए तो ब्रह्मा जी के कहने पर वशिष्ठ जी ने ये सरज नदी को आज लाए, ला करके इस अयोध्या नगर के पास से उनको पास कराए। अयोध्या के तीनों तरफ में सरजू है, तो ये सरजू नदी का भी बड़े महिमा है। ऐसे कहा गया है कि कई लोग कहते हैं गंगा जमुना तो बार बार है, सरजू में एक बार स्नान करना चाहिए। तो क्योंकि सरजू नदी जो है वो नेत्रजा है, भगवान के आंसू हैं, ऐसी की मनंती है उसका कि सृष्टि के शुरुआत में भगवान गर्भोदक साई के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वो तो प्रकट होकर के उनको अपना प्राकट्य स्थान का कुछ पता ही नहीं चलता, कमल फूल के ऊपर बैठे रहते हैं, बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ नहीं मिलता, अंततः बैठ के तपस्या करते हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद में भगवान प्रसन्न होते हैं और उनको दर्शन देते हैं। भगवान इतने खुश हो जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास आकर देखते हैं कि मेरा पुत्र कितने कठोर तप किया है, तो पिता के रूप में भगवान प्रसन्न होकर के इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके आंखों से आनंद के आंसू बहता है। ब्रह्मा जी से हाथ मिलाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, अपने रूप को दिखाते हैं, अपने धाम को दिखाते हैं। तब भगवान ने इतने प्रसन्न होकर आनंद होकर के आनंदाश्रु बहाते हैं, तो ब्रह्मा जी देखे मेरे डैडी खुश होकर के रो पड़ते हैं, तो उस आंसू को कलेक्ट किए, उसको संग्रह कर लिए, भगवान के नेत्र से जो आंसू टपके संग्रह करके बोले कहाँ रखूँ, अब तो उनका क्लास पास मिला नहीं था उनको, तो मन से एक पौंड बनाए, पौंड समझते ना, एक तालाब, मन से एक, और तो कोई लेबर तो थे नहीं, कोई ठेकेदार थे नहीं, किसी बोलेंगे व्यवस्था करो, वो अकेले थे, तो अपने मन से ही पहले ब्रह्मा जी की सृष्टि से मानसी सृष्टि हुआ करता था, जिनके पुत्र भी सब मन से किए, सब मन से किए, तो मन से ही एक सरोवर सृष्टि किए जिनका नाम पड़ा मानस सरोवर। क्या हुआ? मानस सरोवर। तो मानस सरोवर में जो भगवान के जो नेत्र से प्रसुप्त जो उनके आंसू थे, तो उनको वहीं पर संरक्षण किए, वहीं रख दिए। भगवान के आनंदाश्रु है, उसको मन से ये सरोवर बना करके उसमें संरक्षण किए। वो तो अनेक दिन तक मानस सर करके रहा, मानस सरोवर करके, और भगवान के आनंदाश्रु वहीं सुरक्षित रहा। तो अंततः जब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्न किए, ब्रह्मा जी बोले देखो जब इस धाम के लिए आप ऐसे पवित्र जल चाहते हो, नदी चाहते हो, तो एक धारा में अलाव करता हूँ आपको, सुबह एक धारा वहीं से ले आओ मानस सरोवर से, वहीं ये भगवान के साक्षात चिन्मय आंसू हैं, आनंदाश्रु हैं, उनको अयोध्या किनारे ले जाओ। तो वशिष्ठ जी ने ये व्यवस्था किए, हिमालय को चुटी उनके मानस सरोवर है, वहाँ से एक धारा इस पर लेकर के आए, वहीं है सरजू। सर से जात हुआ है इसलिए सरजू हैं। तो उसको कोई सरजू, कोई नेत्रजा, कई अनेक अनेक प्रकार नाम से पुकारते हैं। तो साक्षात भगवान के चिन्मय आनंदाश्रु है, तो उनमें सर कहना ही क्या है, उनमें जो पवित्रता है, जो चिन्मय शक्ति है, इस प्रकार वो जाकर के मानस सरोवर से बह करके अयोध्या की तीनों दिशाओं को प्रावित करते हुए आगे जाकर गंगा से संगम हो जाता है, गंगा से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सरज नदी का भी बहुत भारी महिमा वर्णन है। अंततः भगवान इस सरज नदी में पूरे भगवत वंश में, इसी खाक वंश में, अयोध्या नगर में जितने बड़े बड़े नरेश राजा हुए, सभी ने सरजू के सेवन किए, सभी सरजू को और सभा नाना प्रकार से उपयोग किए और कितने ऋषि महर्षि मुनि सब उनके सेवन किए और अंततः जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए, भगवान राम आए, उन्होंने तो सरयू में कई प्रकार में स्नान करना, जल तर्पण करना, जल क्रीड़ा करना, और जो विश्वामित्र के साथ जा रहे थे यज्ञ रक्षा के लिए, तो इस सरयू में होते हुए गंगा संगम पर्यंत गए, सरयू का महिमा वशिष्ठ जी से श्रवण किए, और अंततः भगवान जब वनवास के बाद में वापस आ करके लंबे समय तक लगभग 11,000 साल तक अयोध्या के राजा बने। ऐसे नहीं कि भगवान चले गए राजा नहीं बने, भगवान सबसे लंबे समय राजा बने थे। यहाँ अपने हिसाब से लग कहते हैं 11,000 वर्ष तक वो राज्य किए अयोध्या में आ करके, सीताराम दोनों ही। तभी तो राम दरबार हुआ, सीताराम लक्ष्मण हनुमान बैठे राज सिंहासन पर। तो इतने लंबे समय तक राज किए और राज्य के अंत में भगवान की जब आपने स्वलीला का प्रकट समय हुआ, तो उन्होंने इस अयोध्या के समस्त नर नारी पशु पक्षी पर्यंत सभी को साथ में लेकर के यही पवित्र सरयू नदी में प्रवेश किए और सरयू नदी से होकर के सीधा साकेत प्रयाण किए। तो सरयू नदी केवल साधारण नदी नहीं, उसमें अगर जो जाएगा वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा वो केवल नहीं, वो सीधा साकेत पहुँच जाएगा, वहाँ तक घोर लो होता है। तो आप लोग तो लंच में जाकर वापस आ गए, को गए नहीं, अगर जाते तो पता नहीं, क्योंकि भगवान राम के साथ गए इसीलिए साकेत पहुँच गए। आप अकेले जाते तो फिर कहीं अटक जाते, क्योंकि वहाँ एंट्री पास नहीं मिलता, फिर आपको कौन बचाने का इसलिए और कहीं पहुँच जाएंगे। तो इसलिए जाना है तो राम के साथ जाने सरयू में, तब तो साकेत पहुँच जाएंगे। तो भगवान साथ में ले गए थे, असंख्य असंख्य पशु पक्षी नर नारियों के साथ में लेकर के सरयू में चले गए थे। तो इसलिए सरयू का महानता और कोटिगुण बढ़ गया था, करोड़गुण बन गया था। तो इसलिए आज तक भी भक्तगण बड़े श्रद्धा से सरयू स्नान कहते हैं। जैसे मैं इसलिए कहा कि सरयू में ही स्नान करके भगवान साक्षात सभी को वैकुंठ प्राप्ति साकेत प्राप्ति करा दिए, इसलिए कहा गया कि गंगा जमुना तो बार बार, लेकिन सरयू में एक बार कम से कम एक बार कर लेना चाहिए। तो ये अयोध्या नगरी है, अयोध्या का महिमा तो था ही, उसमें और चार चांद लगा जब भगवान श्री राम आए। राम के कारण अयोध्या नगरी का महिमा अति विशिष्ट सीमा तक पहुंचा। इस अयोध्या नगरी में भगवान अपने भाइयों के साथ शैशव समय से शिशु की लीला, अपने बाल लीलाएं सब कुछ किए, किशोर अवस्था तक किए इस अयोध्या नगरी में, और अंततः यहीं से वनवास, विवाह के बाद भी यहीं रहे, यहीं से वनवास लेकर के गए, और वनवास काल पूरा करने के बाद, रावण वध करने के बाद वापस आकर के अयोध्या में फिर राज सिंहासन को प्राप्त किए और हजारों साल तक राज्य भी किए यहाँ पे। तो इसलिए आज तक भी कोई भी आदर्श राजा अपने राज्य के सबसे समृद्धि, सबसे अच्छा शासन काल को कोई उदाहरण उपमा देने के लिए चाहता है तो क्या कहता है, राम राज्य कहता है। क्योंकि राम राज्य के तरह अभी तक इतिहास साखी नहीं कि कोई ऐसा राज्य हो, राजा हो तो राम जैसे और शासन हो तो राम जैसे शासन के, राम राज्य के जैसे राज्य था, जैसे प्रजा था, जैसे शासन था, वो इतिहास पुराण साखी है कि इस आदर्शता न भूतो न भविष्यति, ऐसे भगवान राम थे। तो उनके बारे में थोड़ा, राज्य के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। भगवान राम की प्राकट्य होने से पहले भगवान राम की जो पिताश्री होंगे महाराज दशरथ, वो भी कुछ साधारण राजा नहीं थे। कैसे साधारण होंगे, कोई साधारण ऑर्डिनरी व्यक्ति को साक्षात परात्पर परब्रह्म भगवान आपने पापा के रूप में तो नहीं चुनेंगे ना, ऐसे आसान थोड़ी है इनको चुनने। अरे आपको अयोध्या आने के लिए इतने परेशानी कष्ट उठाना पड़ता है, और जो साक्षात भगवान के पापा बनेंगे ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो कैसे सकते हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। ओ दशरथ महाराज इतने महिमा मंडित थे कि उनको उनके जीते जी इंद्र ने अर्ध आसन देते थे, आधा आसन बैठने में देते, और जो स्वर्ग में जाते थे स्वशरीर में स्वर्ग जा करके आधे इंद्रासन पर बैठते थे। कई बार देवताओं ने उनको बुलाते थे उनके ओर से लड़ाई करने के लिए। इतने पराक्रमी प्रभावशाली चक्रवर्ती महाराज दशरथ थे। वो अपने समय में 60,000 साल तक राज्य किए थे, निष्कंटक राज्य किए थे, तो साधारण नहीं थे। लेकिन उनके पिता तो बने, लेकिन पिता तो जब बनेंगे जब कोई उनके माँ होगा पत्नी होगा तो उनके विवाह के बारे में भी अच्छे किंवदंती है। और विवाह होने से पहले भी एक ऐसी घटना अयोध्या में हुआ है जो अयोध्या के इतिहास को भी और बढ़ाते हैं कि कुमार दशरथ उनके कुमार अवस्था में थे भी उनका विवाह नहीं हुआ था, उनके यंग थे। इस अवस्था में तो उनका इतने बल था, सूर्य था, वीर्य था, तो जहाँ जहाँ जाता है दसों दिशा में उनका जय जयकार होता था, इसलिए उनका नाम दशरथ पड़ा। दसों दिशा में उन्होंने अपने रथ चला करके विजय प्राप्त करते थे। जहाँ जाते दस दिशा जानते ना, दस दिग होता है पता है, आप बोलेंगे हमने चार तो दिशा होता है, हमने चार दिशा होता है, चार कोना होता है और एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा है। दस दिशाओं में वो अपने रथ लेकर के गाड़ी चला करके दस दिशाओं पर जय करते थे, इसलिए उनको दस रथ कहा गया। इतने बड़े विजय पराक्रम पुरुष थे वो अपने बालकपन में भी। तो एक ऐसे समय था और बड़े पराक्रम प्रभावशाली थे कि एक बार उन्होंने क्षत्रिय कुमार थे, अपने रण प्रैक्टिस के लिए युद्ध अभ्यास के लिए कई बार उनको जंगल में मृगे आदि में जाना होता था, क्योंकि क्षत्रिय जो होगा जो राजा होगा कई बार उनको संग्राम करना पड़ेगा, अपने बाहुबल से सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा लोगों को, इसलिए युद्ध आदि करना होता था। युद्ध आदि प्रैक्टिस तो किसके साथ नहीं कर सकते, मनुष्य के साथ, तो इसलिए हिंस जंतु के साथ जंगल में जा कर के अभ्यास करना ये नीति संगत है, उनको सुविधा दिया जाता था। तो इस प्रकार एक बार महाराज दशरथ ने इस अयोध्या के तटवर्ती सरजू के तटवर्ती किनारे में जंगल में जा कर के मृग अभ्यास करते समय में उनको लगा कि ऐसे समय था, दिन भर घूमते घूमते मिला नहीं उनको शिकार, तो शाम के समय हुआ करता था, समय हुआ नहीं था, सूर्यास्त से पहले थोड़ा थोड़ा गोधड़ी समय हो आता था। उनको लगा कि दूर से कोई मृग हिरण शाम होने से पहले वो जल्दी पानी पी करके अपने स्थान को चला जाना चाहता है, तो सरजू में आकर के पानी पी रहा, जैसे इसी शब्द उनको सुनाई पड़ा। वो दूर से थे, बोले चलो अभी ये तृणचर प्राणी वो पानी पी करके जाना चाहता है, और मैं जब तक पहुंचूं तब तो चला जाएगा, अभी तक शिकार मिला ही नहीं, तो कम से कम एक शिकार तो हो जाए। तो इसलिए उन्होंने उनके पास अस्त्र था, शब्द भेदी बाण, क्या था जो देख करे, हम देखते हैं बाण मारने में लग जाए कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आजकल हम कोई करते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो बाण की इसी महिमा था, सुन करके कहीं से शब्द सुने तो बाण उसी दिशा पर चलाएंगे जहाँ से शब्द आता है उसको भेद करेगा, शब्द के स्रोत को भेद करके वापस आएगा, इसको शब्द भेदी बाण कहते हैं। आजकल ऐसे आधुनिक कला में इसके इस प्रकार से मेंशन हुआ ही नहीं, उद्धवन हुआ नहीं इस शस्त्र के। तो उनके पास शब्द भेदी अस्त्र था, तो वहीं से उन्होंने बाण चलाए जहाँ से शब्द तो हिरण का पानी पी रहा है उसको मार के आए, तो बाद में जाकर मिले वो बाण चला दिए। लेकिन गलती ये था, दुर्भाग्य था कि वो एक हिरन पानी नहीं पी रहा था, वो एक कुमार थे जिनका नाम था श्रवण कुमार। उनके माता पिता दोनों अंधे थे, दोनों मुनि थे, अंध मुनि। अंध मुनि दंपति के एकमात्र पुत्र श्रवण कुमार, वो अपने प्यासे माता पिता बैठे हुए थे, बहुत प्यासे थे, तड़प रहे थे, उनके लिए पानी पिलाने के लिए कलसी लेकर के जल्दी से पानी भर रहा था शाम से, और उन्हीं को बाण लगा और वही पानी के किनारे ही वो टल पड़ा बाण के आघात से, वहीं चित्कार करके पड़ा। दशरथ महाराज दौड़ कर गए, हिरण को अवश्य बाण लगा हुआ, दौड़ कर गए, देखे कि हाथ में जल कलश लिए हुए तड़पता हुआ चित्कार करते हुए एक किशोर बालक सरजू किनारे फटकाता है और वक्षस्थल से रक्त निकल करके पानी को लाल लाल कर रहा है। वो तो अपने आप को देख करके घबरा के विश्वास नहीं कर पाई, ये कैसे हो गया मेरे से। अब सूर्यास्त समय हो रहा है, अंधकार होते होते ये क्या मैं किया, ये सरजू के किनारे ये किए मैं अब कर्म कर दिया, बहुत अपने आप को पश्चाताप के दिखा, इसमें क्या होगा। उनके पास दौड़ कर गए, वो मरने से पहले देखा, बोला हे राजा मैं आपका क्या तकलीफ दिया था, आपको क्या कष्ट दिया था, मैं क्या आपका दोष किया था, मुझे इसे दंडित अब क्यों किया, मुझे इसे मार क्यों दिया, प्राणघात क्यों दिया, मुझे प्राणनाश क्यों किया, मैं आपका तो कुछ ऐसा काम नहीं किया था, कुछ बिगाड़ा नहीं। दशरथ क्या कहें, सचमुच मुझे जानते हैं, मेरा तू किया बिगाड़ा, कुछ नहीं किया था ना, मुझे ऐसा क्यों किया आपने, जब किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मैं तो मर जाऊंगा, कभी मरना था, मुझे दुख नहीं, मुझे दुख यही है मेरे माता पिता प्यास में तड़प रहे हैं, उनके लिए जल लेने के लिए मैं आ रहा था, जल्दी से पानी लेके जाना चाह रहा था, उनको पानी पिला नहीं पाया, जल भरते भरते तू मुझे मार डाला, मैं तो उनके पानी पीने का प्यासी इच्छा पूरा नहीं हुआ, मैं उनको सेवा करने का इच्छा मेरा पूरा नहीं हुआ, तू ऐसा कर डाला। तो हे राजा मैं मरने से पहले आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे माता पिता कम से कम इसे अतृप्त रह करके दुखी ना हो जाए, तो उन थोड़ा पानी तो पिला दो, मेरे आत्मा भी शांति हो जाए, उनके आत्मा भी शांति हो जाए, उनको पानी पिला दो, मैं तो मरूंगा ही, छटपट हो रहा है, प्राण निकलने वाला है, तो कम से कम मैं मरने से पहले उनको पता चले माता पिता को पानी तो पिल गया, वो भी तो जो प्यास में तड़प रहे थे वो तो नहीं, तो कृपा करके मुझे और बचाने का प्रयास मत करो, मेरे साथ दुख मत करके पड़े रहो, जल्दी एक कलसी लेकर के चले जाओ, पानी भरा हुआ है, मेरे माता पिता बैठे होंगे, वो बेचारे दोनों अंधे हैं, वो बहुत आशा करके बैठेंगे, बेटा हमारा गया है पानी लाएगा, इतने प्यास लग रहा पानी पियेंगे, आपको पता रहेगा अभी इतनी गर्मी है, सुबह से शाम तक घूम घूम कर कितने बार पानी पी लिए होंगे, अपने पानी क्या जूस फूस क्या क्या सब पिए होंगे, लेकिन तभी जमाने में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, एसी रूम भी नहीं हुआता था, टमटम रिक्शा भी नहीं मिलता था, और चल कर के जाना, और वो भी चल कर के अंधे थे, खुद नहीं चल सकते थे, वो उनके पुत्र ने उन भार जानते ना टोकरी में बैठा करके माता पिता को कंधे में लेकर के वहीं उनको बेचारा भ्रमण करा रहा था, वो बेचारे कोई उपाय नहीं है, पानी खुद पी नहीं सकते हैं, इतने प्यास से कोई उनको पानी पिला दे वही पिए, मनुष्य होकर भी भगवान ने उनको इसे सुविधा नहीं दिए थे कि जाकर खुद प्या खुल कर पानी पी ले, अंधे थे तो इसलिए दूसरे के भरोसा में थे। इस प्रकार जो दूसरे के ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हैं उनको, और अपने पुत्र पर इतना भरोसा रखते हैं उनको, इसी प्यासी अवस्था में और पानी के लिए तड़पते अवस्था में तो मुझे मार दिया, मैं पानी नहीं पिला पाया, तो जल्दी से लेकर जाओ और तड़पते होंगे उनको पानी पिला दो, फिर बाद में आकर देखना, अगर वो बचे होंगे तो मुझे बातचीत करना, लेकिन पहले लेकर जाओ। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ बहुत प्रार्थना किए मरने से पहले। दशरथ महाराज अभी बिल्कुल फंसे थे, मैं क्या करूं, उसको इसी अवस्था से तीर को अगर निकालूं तब तो मर भी जाएगा सर, अब ना निकालूं तो कैसे क्या करूं। वो बोलता है कि मुझे अगर कुछ करना है प्लीज़ लेकर जाओ, मेरे माँ बाप मर जाएंगे तड़प रहे मेरे वजह से, उनको पानी पिला दो। तो ऐसे धर्म के द्विविधा में फंसे थे भर दशरथ महाराज, कुछ विचार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहा था, तो अंततः उन्होंने बोले ठीक है बाण भी निकालता हूँ, उनको ही थोड़ा साइड कर देता हूँ, देखेंगे थोड़ा ठीक रहेगा, पानी भी लेकर जाता हूँ। तो बाण निकाले तो वो तो गया, बाण निकलते ही उनका प्राण भी चला गया, अटका भा था जैसे। तो बड़े दुखी होकर के बाण फेंक करके बोले, चलो उनके अंतिम इच्छा था उनके माता पिता को पानी तो दे देता हूँ, नहीं तो वो बेचारे पानी में तड़प मरेंगे। वो तो गया, बेटा तो गया, यहाँ वो मुनि दंपति उनका दुख ना हो जाए। तो जल कलश लेकर के सूर्य अस्ताचल को जा चुके थे, अंधकार हो चुका था, और शाम के समय में इतने तड़पते हुए प्यासे अवस्था में जाकर पहुँचे। जैसे पानी लेकर के जा रहे थे तो उनका पद चलने का जो धीरे धीरे शब्द पास में आ रहा था, तो अंध मुनि दंपति बोल रहे थे, बेटा श्रवण इतने लेट कैसे हो गया, हमको पता था कि नदी तो पास में ही था ना, इतने विलंब क्यों, क्या सोच रहा था क्या ऐसे। और उनके इस प्रकार के पुत्र वत्सल्य के बात सुन करके दशरथ महाराज के हृदय विदीर्ण होने लगा कि मैंने क्या कर दिया, कितने अपने बेटे के प्रति आसक्त है, पूर्ण निर्भर है, कुछ नहीं है, दोनों माता पिता अंधे हैं वृद्ध हैं, कोई सहारा नहीं, एकमात्र सहारा उनका बेटा था, और दोनों टोकरी में बैठे हुए थे, कहीं बाहर चलना विचरण करना कुछ करना सामर्थ्य नहीं था उनका, ऐसे पूर्ण निर्भरशील और ऐसे सेवाकारी पुत्र उनका एक था जो वास्तविक श्रवण कुमार था। उनका नाम भी ऐसा था, कुमार केवल सुनने वाले, माता पिता का आदेश श्रवण करना ही उनका कुमारत्व तो था, उनका पुरुषत्व तो था, जो सुनता था उसको करता था। आजकल हम ऐसे हैं जो सुनते हैं उसको करते नहीं, जो हम सोचते हैं वही करते हैं, तो हम लोग कोई श्रवण कुमार नहीं है, हम सब अपना सोच कुमार है, हम बड़ों का बात सुन करके हम नहीं करते, हमारा मन में जो आता है हम वही करते हैं, नहीं श्रवण कुमार इस प्रकार नहीं, रियली फलवेर ऑफ अथॉरिटी वो श्रवण कुमार होगा, जो सुनेगा वही करेगा उचित कर्म। तो इस प्रकार कुमार को जो आता था वो बहुत अपने मन से खुशी होकर के पुत्र के साथ बात करने के लिए और सुंदर बात करते थे, लेकिन महाराज दशरथ तो विदीर्ण हो रहा था, मैं क्या करूं क्या बोलूं, जल लेकर पास में जाते थे कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उनका उद्विग्नता और बढ़ने लगा। अंध मुनि दंपति का बोले, बेटा हो क्या गया, तू बात क्यों नहीं करते हमसे, क्या हो गया तेरा, हमसे रूठ क्यों गए, क्या करते हो, अभी तो अच्छे से बात करके गया पानी लाने के लिए, बेटा क्या हो गया, क्यों हमसे नाराज है, बात क्यों नहीं कर रहे बेटा, आप अगर हमसे बात नहीं करोगे तो हम प्यासे मरेंगे, पानी नहीं पियेंगे अपने हाथ से, बात तो करो। लो और समस्या हो गया, वो मरते समय बोला कि पिताजी की तड़प रहे उनको पानी पिला दो, और पिताजी तड़प रहे हैं तो बात नहीं करेंगे, फिर पानी के पीएंगे तो बात ही नहीं करेंगे। अब वो तो लेकर जाते थे पानी पिला दो, वो बोल दी पानी हम पियेंगे नहीं आपके यहाँ से, पहले तो बताओ तो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, आते आते लेट किया और अभी आकर भी हमारा सामने बात ही नहीं करता हमसे, बेटा क्या हो गया तेरा, ऐसे होता ना कभी कभी, हम लोग अपने आदमियों से बोलते हैं क्यों नहीं बात करते हैं, क्या हो गया। तो उन्हें अभिमान करके बोलने लगे, बेटा बोलो ना क्या हो गया, और ऐसे अभिमान कर बोले, नहीं तू बात नहीं करके ना पियेंगे कैसे, प्यास से बहुत हमारा कंठाग्रत सूख रहा है, लेकिन तेरे बात हम सुनना चाहते हैं, प्यास बड़ी बात नहीं, तू हमारे है, तू हमसे नाराज क्यों है, क्यों नहीं हमसे कुछ बोलता है बेटा, तू पहले कुछ बोलो, हमारे मन तृप्त हो जाए तब तो पियेंगे पानी। दशरथ महाराज को लगा कि उससे बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी भी नहीं पियेंगे, फिर और भी दो मर्डर हो जाएगा एक तो करके आया अज्ञात सार से, तो बोलने लगे, उनका मुंह से शब्द निकलते ही वो चौंके उठे वो दोनों, क्योंकि आपने बेटा के गले के स्वर को कितने नहीं पहचान, कौन माँ बाप है जो अपने बेटे को तुतलीपन से ही बात सुन सुनते आए, जो पापा 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 करता होगा तभी से सुनते सुनते आए, तो उनके स्वर को बिल्कुल रिकॉर्डिंग रिफिटिंग बैठा हुआ था, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता दूसरे को बोल देंगे कि मेरा बेटा बोल रहा ना, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल फाइन ट्यून होकर के बैठा हुआ है, ऐसे सेब रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो जैसे दशरथ जी का स्वर निकला तुरंत चौंके, तुम कौन हो, हमारा बेटा कहाँ गया, तुम कौन हो, क्या सच बताओ, अब पानी क्या पिए, अब अस्थिरता उद्विग्नता कष्ट और बढ़ा, तुम कौन हो, हमारा बेटा कहाँ है, बाप रे बाप, अब कैसे बताएं। दशरथ महाराज बोले पानी तो पी लीजिए, पानी क्या पिएंगे, बोले बताओ श्रवण का क्या हुआ, श्रवण कुमार का क्या, तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, हमसे क्या संबंध है। विकलता और उद्विग्नता और बढ़ते चला गया, दशरथ महाराज के दुख भी और बढ़ते चला जा रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के महाराज दशरथ को बोलना पड़ा, जल के से बोले हे मुनि दंपति पानी तो पी लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ अमूलचूल घटना से बता रहा हूँ। और अपने बोले नहीं अपने परिचय दो, हम कैसे पी लेंगे आपसे, तुम कौन हो, मैं दशरथ हूँ, अयोध्या के युवराज हूँ, आप युवराज दशरथ, आप क्यों ऐसे हैं, कैसे क्या घटना क्या, अब पानी तो नहीं, पानी क्या पियेंगे, पहले बताओ हमारा बेटा क्या होगा, तुम कैसे आ गए, रो पड़े चिल्लाने लगे, हमारा बेटा कहाँ गया, तू हमको डेली डेली पानी थोड़ी पिला सकता, उसका क्या हुआ, वो क्यों नहीं आया, कहाँ उसको छिपा के रखा, क्या क्या, तुम क्यों आए हो, उनको भेजो। अरे उनको भेजूंगा कैसे होगा, तभी ना, अंततः बोलना पड़ा उनको कैसे ऐसे अज्ञात सार में ऐसे ऐसे हुआ, आप पानी तो पी लीजिए, ऐसे ऐसे घटना हुआ है, आप पानी क्या पियेंगे, पानी उनके हाथ में धरा को धरा रह गया, पानी की प्यास उनके कंठ में ऐसे कंठ में रह गया, आशा आशा में रह गया, ना पानी पी पाए ना पानी पिला पाए, जल कलिश में रह गया, उनके कंठ ऐसे सूखा ऐसे रह गया, और रोने पड़े, रो भी रो रो कर बोले कि अब बेटा को मारने के बाद हमको पानी पिलाने के लिए आए हो, रे पापी आतताई, हम तुम्हारे ख्याल को बिगाड़ दे, ऐसे दंड हमको क्यों दिया, हमारे कोई नहीं है जीवन में, एकमात्र हमारा पुत्र था, वही हमारे सब कुछ था, हम कैसे जिएंगे उसके बिना, पानी पीने से क्या होगा, हमको लगा कौन पालन पोषण रक्षण भैकण मधु कौन कैसे करेगा, तो हमको पानी पिला करके आज क्या करेगा। और इतने बिकल होकर रोने लगे, रो करके दशरथ महाराज समझाने लगे मैं भी नहीं जानता हूँ इस प्रकार हो गया, मैं आपको पूरा व्यवस्था, तू क्या व्यवस्था करेगा हमारा, और बोले नहीं हमसे नहीं जिया जाएगा, उनके बिना हम जी भी नहीं सकते। और दोनों दंपति रो रो करके और प्राण त्याग करने का अनुभव आया उन दोनों का। वो मरते समय में उस भयंकर सरज नदी के किनारे में वो जो संध्या था, उस दिन का सूर्यास्त था, दशरथ महाराज के भाग्य का, जैसे भाग्य रूपी सूर्य अस्ताचल को लेने वाला था, उनके सौभाग्य के एक स्टेप डाउन हो गया, उन्होंने उनको अभिशाप दे दिया मरते मरते उस संध्या समय में कि हे युवराज, अभी तक उनका शादी नहीं हुआ था और कि तुम्हारे जिस प्रकार के पुत्र शोक में हम आज दोनों मर रहे हैं, इस प्रकार आपको भी पुत्र शोक लगेगा, आप भी पुत्र शोक में मरोगे, इस प्रकार साफ थी। अभी उनके पुत्र ही थे नहीं तो खुश हुए, कम से कम बेटा तो होंगे क्योंकि उनको जन्मपत्र से बताया गया था तुम्हारे भाग्य में पुत्र ही नहीं है, इसलिए वो बोले तो शादी क्या करूं, भाग्य में पुत्र ही नहीं है। लेकिन अभी उनको अभिशाप मिला कि तू पुत्र शोक, तो पुत्र तो होगा तभी तो शोक होगा, तब उनके लिए वरदान हो गया, बोले खुशी तो होगी, बोले चलो बेटा तो होगा पहले तो ये अनामशा तो बेटा ही नहीं होंगे मेरे पुत्र ही नहीं होंगे तो पुत्र शोक मरूंगा कैसे। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज को ये बात उनके पास घटित हुआ था उनके जीवन में, इस अयोध्या नगरी में, इस सरजू किनारे में इस घटना। उसके बाद में उनके विवाह के लिए व्यवस्था होता है, तो उनके विवाह के ऐसे कि मदंती प्राप्त होता है कि जो कौसल देश की राजकन्या कौसल्या के साथ विवाह ठीक होता है। कुमार दशरथ की वो उनके जमाने में प्रसिद्ध थे, देवता लोग भी डरते थे, बोला दशरथ थे उन्होंने, इतने महापराक्रमशाली वीर थे, तो इसलिए तो उनको कौशल राज की राजकन्या कौसल्या के साथ उनका विवाह ठीक किया गया। तो जिस दिन सब सगाई अगर हो गया, ट्वीट हो गया, और इधर रावण तभी दिग्विजय कर रहा था, दशरथ महाराज का शादी भी नहीं होता तभी रावण था, इतने सीनियर है वो, दिग्विजय कर रहा था तो उन्होंने भी गणना आग्रह सब किया था, तो उनको पता चला रावण तू तो अपने जीवन में बहुत दिग्विजय करके त्रिलोक विजय होगा, लेकिन तेरे काल भी है ना, कैसे मरूंगा, कौन मुझे मार सकता, बोले तुझे दशरथ के बेटा ही मारेगा। उनको पता चल गया रावण महापंडित था, तो उन्होंने पंडित से गणना करके उनको पता लगा लिया था कि मेरा मृत्यु कहाँ पे हो, किस में होगा, दशरथ के पुत्र ही तुझे मारेगा, अभी तो शादी नहीं हुआ उनका, तो उसका पुत्र होगा तो ही तुझे मारेगा। तो रावण ने तो इसलिए डिसीजन कर लिया, बोला उनको शादी नहीं करने दूंगा, बेटा होंगे नहीं तो मारेंगे कैसे, न रहे बांस ना बजे बांसुरी होगा। तो इसलिए जब बहुत बड़े कुमार दशरथ के वहाँ का भारी आयोजन होगा, चारों तरफ से लोग इन्विटेशन किया गया शादी के, क्योंकि बहुत बड़े राजकुमार के इतने विशाल शादी हो रहा था, तो रावण को पता चला, रावण ने अपने सिद्ध योग बल से आ करके जिस दिन यहाँ से बारात गई थी, शादी होने वाला था, वो उसी दिन आया, बारात जाकर पहुँचा था, और जो मंगनी ये होता ना हस्तकंठी अगर पढ़ने, वो जैसे मंगनी करने के लिए देवी मंदिर की देवी पूजन करके आएंगे जगह मंदिर पर, उनका फरी फरी पड़ेगा, उसके पहले से वो घर से जा करके कौसल्या को गायब कर लिया, उठा लिया, उनसे किडनैप कर लिया, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला राजकुमारी को अपहरण करके ले गया रावण ने कौसल्या को, ला करके बोला उनको तो मुझे कुछ करना तो धरना तो है ही नहीं, मुझे केवल है कि दशरथ का शादी गड़बड़ हो जाए, उनका बेटा ना हो, वो बेचारा की शादी जिसको करना था वो तो मुझे उनको ले लिया, किडनैप कर लिया, और ला करके रास्ते में एक मंदिर था, शिव मंदिर, बिल्कुल विराम जगह था, उसमें बोला उसको लेकर कहाँ जाऊँ, घर में वो भी अपनी पत्नी अगर वो बोलेंगे क्या कर रहा है इससे, तो उनको लेकर जा रहा था, हटा लेकर के मंदिर के अंदर उनको छोड़ दिया, छोड़ के कबाड़ बंद कर दिया बाहर से, बाहर से लकअप करके उन्हें छोड़ के चला गया, बोला बस बाद में कोई उधार होगा करेगा मरेगा जो होगा देखा जाएगा, तुम दशरथ के शादी तो नहीं हो पाएगा, दशरथ के शादी नहीं होगा तो उनका बेटा कैसे होगा, बेटा नहीं होगा तो मैं मरेगा कौन, ऐसे करके चला गया। और जब उन्हें किसी को तो पता नहीं था, और सभी शादी के जो बारात आए उनके रिसेप्शन में बहुत बिजी रहे, खान पान इनसे बहुत भारी टारी, आप लोग तो जानते होंगे जब बारात आ जाते हैं कन्या पक्ष बहुत बिजी हो जाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं, क्योंकि उनके देखभाल वही एक पिक पॉइंट होता है, उसी समय पूरे ताम तोड़ में रहते हैं बारात पार्टी, उनको ठीक से रिसेप्शन नहीं हो, खान पान नहीं कराएंगे तो गाली देते रहेंगे, तो इसलिए पूरी ध्यान दे करके उनको आतिथ्य किया गया, और भूल गए कि भाई ओ तो वहीं घर में तो है शादी तो होने वाला है, उसमें क्या है, अब क्या पता कि हठात माल बीच से चोरी हो गया करके। अब जब हुआ हस्तघंट के समय जो उनको बेदी को बहू को लाना है शादी के समय, जाके देखते हैं कि वो है ही नहीं, कैंडिडेट ही नहीं, अब किसको कहें, दशरथ महाराज बैठे हैं बेदी पर, तो उनको लाना है फिर ही पढ़ना है, वो है ही नहीं आप तो पूरे ढूंढे विचलित हो गए, क्या क्या आ जाए, कहाँ चला गया, किसको पूछे, किसी को पता नहीं, तो चोरी मार। तो उनके एक छोटी बहन थी, कहते उनका नाम सुमित्रा थी, इसलिए सुमित्रा के शादी का वर्णन बाकी कहीं मिलता नहीं है, सुमित्रा उनकी बहन थी कौसल्या की। तो उनको बोले हो चलो दीदी नहीं है तो फिर आप ही चलो, क्या करें, आपके लिए शादी तो ठीक नहीं हुआ था, दीदी के ठेके था वो है नहीं ऑप्शन, तो क्या करें, किसको बताएं, शर्म की बात है, तो उनको ज़बरदस्ती दर्शन करके लेके बैठा दी, उनको शादी करो सुमित्रा को क्या करें, सब पिताजी माता जी बोल चलो दीदी है नहीं ऑप्शन, अब जब देखा जाएगा तो अब तो वापस कैसे जाएंगे, बर बैठे हैं अल्टर पर, तो उनको शादी कर दिए। शादी होकर शादी के समय तो घूंघट होना थे दशरथ को, पहले तो फोटो पिक्चर वगैरह देखे नहीं थे, उन्हें भी पता नहीं कि ऐसे चेंज हो गया करके, माल चेंज हो गया, कॉन्टैक्ट होता किसके साथ, अगर डिलीवरी हुआ दूसरे माल, ये पता नहीं चला। अब उनको शादी करके बारात विदाई हो करके वरवधु जब आ रहे थे वापस, अब सुमित्रा तो पता नहीं था, पता नहीं दीदी के जागे मुझे जबरदस्ती भेज दिए, क्या होगा पता है। वो आ रही थी, विदाई होकर आ रहे थे, वही रास्ते में आ रहे थे, आधा रास्ते में जो वापस आ रहे थे, शाम हो गया, सुबह से विदाई होकर आए थे, शाम हो गया, वही वीरान जागा में, वही शंकर के मंदिर के पास, वहीं उनके कैंप लगा, बोले यहीं रुक जाते हैं कल सुबह जाएंगे। वहीं जो रुक गए और सुबह से छटपटा रही है, कल रात से ला करके उनको घर में बंद करके कबाड़ बंद कर दिए, तो बेचारी रो रही है, छटपट होकर के शादी के श्रृंगार की है, सब सोल श्रृंगार करके सब पहन करके अकेली एक घर के अंदर बंद करके पड़ा है, और शंकर भगवान को मंदिर में उनको प्रार्थना कर रही, बिचला चिल्ला रही है, कोई नहीं है वीरान। तो दशरथ महाराज को एक स्त्री के क्रंदन के श्रवण सुनाई पड़ा, बोला अरे ये कौन रो रहा है ना महाराज, ये मंदिर तो बंद है ना, कोई बात नहीं, देखो खोलो ना, ताला लगा अंदर से कैसे अंदर आना। तो राजा आदेश हुआ, ताला तोड़ा गया, ताला तोड़ करके देखे, बिल्कुल सुलह श्रृंगार की हुई ये स्त्री है। अरे आप कैसे इधर है, क्या है, सब हल्ला हो गया, दौड़ के कि बिल्कुल शादी के वतन पहना हुआ, बात सुन करके सुमित्रा दौड़ करके गई, बोली दीदी तो नहीं है, उनका चोरी हो गया था, जा कर देखा तो दीदी है। अरे बिल्कुल उनको लिपट गई, चिपक गई, रोने लगी दोनों, तो पूछा गया कि आप जानती हो उनको, अब दशरथ महाराज अपने शादी करके जो पत्नी आए थे उनको ठीक से देखे भी नहीं थे, उनको पूछे वार यू हु इज सी, बोले प्रभु असली माल तो वो है, हम डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है, हाँ उनके साथ शादी होने वाला था लेकिन उनके चोरी हो गया था, मुझे जबरदस्ती कर दिए थे, आपको पता नहीं चला। तो दशरथ महाराज फिर दोनों पत्नी हुए, कौशल्या और सुमित्रा दोनों को लेकर के आए। तो इसलिए हम कभी कभी कहते हैं ना, हम कर लेंगे सब व्यवस्था कर लेंगे, कुछ नहीं, आप कितने भी व्यवस्था करें, सुव्यवस्था करें, मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आप कितने भी क्या क्या करेंगे भगवान नहीं चाहेंगे। रावण ने पूरी कायदा लगा करके बंद करके ला करके वीरान मंदिर में लकअप कर दिया था, लेकिन वहीं से लक तोड़ करके उनको निकाला गया, और वही शादी की वहीं पर पहुंचा और दोनों की शादी। तो इसलिए हरी इच्छा बलवान, भगवान की इच्छा को कोई रोका नहीं जा सकता किसी भी प्रकार से, तो इसलिए भगवान की इच्छा को सरेंडर करना ही अच्छा है, उनको विरोध नहीं किया जा सकता। तो उनको लेकर आए और उनसे भी पुत्र नहीं हो रहा था, लेकिन पुत्र तो होना था, तो पुत्र यज्ञ से पुत्र हुआ। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज जो कि इतने पराक्रमी योद्धा थे, मैं बता रहा था कि देवताओं को और सभी जाकर के युद्ध करते थे, तो इसे पराक्रमी दशरथ महाराज के पुत्र के रूप में वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट हुए थे। और अयोध्या की धरती पर जब भगवान अपने चार रूप में प्रकट हुए, तो ये तो सूर्यवंश की राजाओं की नगरी था, राजधानी था, लेकिन सूर्यवंश का वास्तविक सौभाग्य सूर्य उदय हुआ जब रघुकुल तिलक श्री राम हुए। रघुवंश में प्रदीप के समान, रघुवंश के सूर्य के समान भगवान राम प्रकट हुए, और उनके वंश का, स्थान का और पूरे खानदान का ही सौभाग्य बढ़ गया भगवान के आते ही। तो इसी चलते यद्यपि अयोध्या नगरी बड़े महिमा मंडित था, लेकिन भगवान अपने चार रूप के साथ यहाँ प्रकट होकर के आज इतने पावन बना दिए कि पूरे भारतवर्ष में जो सात मुख्य दायिनी पुरी है उसमें से एक उसको गणना किया जाता है, क्योंकि भगवान के पदार्पण के हेतु। आप जानते हैं भारतवर्ष में सात मुख्य प्रदायिनी पुरी कहाँ, माता जी कहाँ गई, बोलने वाली माता जी, सप्तपुरी, सप्त ऋषि बताए थे, सप्तपुरी बताना पड़ेगा, कोई बोलने वाले हैं, बोलने वाली नहीं। प्रभु जी बोलेंगे, हम माता जी तरफ से नहीं आज। बोलिए सात हो गया मेरे हिसाब से, छह हुआ और कोई गिनने, सात हुआ कि नहीं, सात हो गया। अच्छा थैंक यू। अरे तो इन सात मुख्य प्रदायिनीपुरी से एक अयोध्यापुरी है, जिनमें जिनके संस्पर्श में आने से मुख्य प्राप्त हो जाता है, और जिनमें बास करें तो फिर कहना है क्या है। इसी इसमें एक से एक जो भी हैं, यहाँ के नदी, यहाँ के कुंड, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के सब कुछ, इस क्षेत्र के वासी सब राम प्रेम के प्रदान करने में समर्थ हैं। भगवान के साकेत के ही अंश विशेष हैं सब, नहीं तो यहाँ आने के सौभाग्य प्राप्त नहीं होता इतना आसन से। तो इसीलिए तो भगवान ने सभी को अपने साथ कर संकट ले गए थे, क्योंकि उनके ही धाम था, उनको ले गए थे। तो भगवान ने अंततः वहाँ प्रकट होकर के अपने कुमार लीला पर्यंत जैसे जैसे लीला किए थे, जिस जिस प्रकार के लीला किए थे, किसी ने मुझे उस दिन अपने ड्रामा किया केवट वाला, किसी ने वो माता जी मुझे बचा, तो बोले केवट थोड़ी पता था भगवान राम भगवान करके। एक ऐसे प्रसंग हुआ था घटना अयोध्या में, कि जब भगवान राम अब स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ रहे थे गुरुकुल में, चारों कुमार तो एक ही एज के थे, चारों एक साथ में पढ़ते थे, और भी पढ़ते थे, वशिष्ठ जी के गुरुकुल है यहाँ से थोड़ी दूर, वहाँ पे पढ़ते थे। तो जिस समय उनके ग्रेजुएशन था, जिस साल एक होता ना, हम लोग जिसको ग्रेजुएशन करते हैं कहते हैं, आज भी उसी को ग्रेजुएशन को हिंदी में स्नातकोत्सव कहा जाता है ना, नहीं स्नातकोत्तर अब लिखते हैं हिंदी में ना, हम स्नातक के स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर का मतलब क्या होता है, स्नान करना, कोई विशेष अचीवमेंट होने से एक अवभृत स्नान किया जाता है, तो स्नान जो कर लेते हैं, स्नान के उपरांत स्नातकोत्तर, स्नान करके उतर चुका है तो स्नातकोत्तर माना जाएगा। तो वो जो अवभृत स्नान अचीवमेंट स्नान होता है, तो राम लक्ष्मण भरत आदि का जो उनके गुरुकुल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, स्नातक हो गया, स्नान कर लिए, तो समावर्तन उत्सव होता है, बहुत भारी फेस्टिवल होता है। तो समावर्तन उत्सव चारों कुमार का हुआ करके, विशेष अच्छे से अचीवमेंट किए हैं, गुड रिजल्ट करके स्नातक हुए हैं, तो इसलिए चारों कुमारों को आज गुरुकुल से भवन को, राजभवन को वापस आना है, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे तो गुरुकुल में रहकर पढ़ना होता है। आजकल तो सब गुरुकुल में कोई डालते नहीं, होम स्कूलिंग ज़्यादा करते हैं, नहीं तो भेजते हैं, इसे करते हैं, लेकिन प्रभाव था जो विद्यार्थी होते हैं उनके पांच लक्षण कहा जाता है, जानते हैं स्टूडेंट्स की फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, ऐसे विद्यार्थियों के पांच लक्षण प्रभु जी जानते हैं, बताएं बताएंगे दीजिए प्रभु जी, बैठ दीजिए। गुड, ये पांच लक्षण होता है स्टूडेंट लाइफ स्टूडेंट्स का। तो इसमें है कि गृह त्यागी, घर में रह करके विद्यार्थी विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, घर से अलग हो करके आना होता है। तो घर से गुरुगृह में रह करके गुरुकुल में चारों कुमार ने अपने अध्ययन करके जो अपने स्नातक लिए और समावर्तन उत्सव हुआ, उस दिन ग्रांड फेस्टिवल हुआ, उनको गुरुकुल से स्कूल से अपने राजभवन को लाने के लिए विशेष व्यवस्था किया गया। स्वयं चक्रवर्ती महाराज दशरथ स्वयं अपने गाड़ी लेकर के गए कि अपने चारों लालाओं को साथ में लेकर आएंगे जो आज ग्रेजुएट हो चुके हैं, वशिष्ठ जी के सर्टिफाइड ग्रेजुएट हुए हैं, तो उनको लाएंगे। विशेष रथ सोने के निर्मित विशाल रथ लेकर के गए और कितने कितने गिफ्ट आइटम गुरुदक्षिणा देने के लिए लेकर गए और पूरे अयोध्या की सारे नर नारी जो भगवान गुरु प्रति आकृष्ट सब पूरे अयोध्या सजाया गया था। पूरे गुरुकुल से अयोध्या पूरा जो मेन रोड था रास्ता में जैसे पैरेड होता ना दिल्ली में 26 जनवरी को, इस प्रकार से पूरे पैरेड में सजा करके लाखों लाखों पब्लिक भीड़ थे। सब देखेंगे आज बिल्कुल उन्मुक्त रथ में बैठ करके पिता के साथ चारों कुमार गुरु जी के साथ और सारे बैठ करके सर्टिफाइड होकर ग्रेजुएशन लेकर बाद वापस आएंगे। सबको खुले दर्शन मिलेगा, सबको भर भर करके गिफ्ट मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, दर्शन मिलेगा। क्या ये कौन भाग नहीं लेगा ऐसे समावर्तन उत्सव में? तो लाखों संख्या में लोग भीड़ जमा हुआ था दोनों रास्ता में, दोनों साइड में। एक तो कड़न हाई टाइट सिक्योरिटी थे, उसके दोनों तरफ से भीड़, असंख्य भीड़ लोग थे। सभी देखना चाहते थे, फर्स्ट लाइन में खड़ा होकर हम ठीक से देखेंगे, जो पीछे उनको ठीक से देखा ही नहीं जाएगा, वो थोड़े कैसे खड़े होंगे कैसे करेंगे, जो जैसे करके भीड़ भाड़ में सब खड़े थे देखने के लिए। और जैसे टाइम पर बीच मेन रोड में चक्रवर्ती महाराज और गुरु लोग और उनके बॉडीगार्ड और उनके बीच में पिताजी के दोनों बाजू में दो दो बच्चे चार कुमार आएंगे अब ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके, तो उनको खुले हम केवल फोटो नहीं आएगा और स्वयं बैठ करके आएंगे, सब देखेंगे और उनके हाथ से उपहार आशीष उनके दर्शन उनके उनको भेंट कोई देगा, उनसे भेंट स्वीकार करेगा। लोगों का बहुत अच्छा था, दोनों साइड से भीड़ जमा हुआ था, पूरा गुरुकुल से लेकर अयोध्या तक भवन राजभवन तक भीड़ जमा हुआ था। ये खबर दूर दूर तक फैला हुआ था, एक उच्च समावर्तन उत्सव होने वाला है। वहाँ से लगभग काल अब रात में बस में आते समय मार किया था एक जगह पर, प्रतापगढ़ करके एक जगह आया था, उस जगह पर रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था सिंगपुर धाम। आप सब सो गए होंगे, रात को लगभग 2-2:30 बजे क्रस किया था उस पर, उसी एरिया में बस पार किया था। हम भी आपके साथ साथ चल रहे थे, हम नज़र किए थे, लिखा हुआ था बहुत बड़ा बोर्ड सिंगपुर धाम। दो रात को 2-2:30 बजे के बीच में हम पार किए थे इस स्थान को। तो मतलब कल जो रात में जो रोड में है ना, उसी रोड में भगवान गए थे, वही रोड था अयोध्या को जाने के लिए, अयोध्या से इलाहाबाद और फिर चित्रकूट आप आए, सेम रूट से आए। तो जितने तपस्या आपको आने में करना पड़ा उससे कई गुना ज़्यादा तपस्या हम जाते समय करना पड़ा है ना नहीं? आप तो एसी बस 2x1 बस में बैठ कर आए, और तो पैदल में भारत देख रहे गाड़ी में गए थे घोड़े गाड़ी में, और रास्ता तभी कैसा रास्ता हुआ होगा। जो भी हो तो वहाँ तक को मैसेज पहुँच गया था, तो सिंगरपुर के जो आदिम आदिवासी लोग थे, जंगली पत्थर इतने हाई सिविलाइज नहीं थे, तो वो जो कुहक ने अपने बचपन से राम के प्रति उनके भाव था, बहुत उनके सुन करके जन्म से उनका मन था, लेकिन कभी देखा नहीं था। लोगों से राम की महिमा सुनता है, इधर से सुन करके अपने पिताजी से इधर से जो सुन करके सहज उनके मन राम के प्रति आकृष्ट हुआ था, लेकिन कभी भेंट नहीं हुआ था और हमेशा मिलना चाहता था। लेकिन वो पिताजी बोलते पागल कहें कि वो राजकुमार है, तुम कैसे मुझे मिल सकता है, तेरा क्या नौबत है, तेरा क्या औकात है, कैसे तो मिल सकता। वो तो बेचारा बालक था, सेम एज के थे राम और गुहक, लगभग उम्र सम थे, तो इसलिए तो मानता था मेरे मित्र है, मेरे फ्रेंड है, वो भी पढ़े मैं भी पढ़ कर आया हूँ, क्यों नहीं मिल सकता। अरे तू कैसे मिलेगा, तू ये राजकुमार है, तुझे कौन पहचानेगा, कोई नहीं। नहीं, मैं तुम्हें मित्र मानता हूँ, पापा भेज दो ना। और जब पता चला कि आज समावर्तन उत्सव है, वो तो पागल हुआ। अपने गांव में अपने पापा को बोला, खाना पीना छोड़ कर बैठ गया, मुझे जाने दो। इतने पुत्र का जीत को छोड़ कर कभी नहीं देखा, मिला नहीं कभी, इतने आग्रह राम से मिलने के लिए, इतने उच्छा मन में, इतने सहज भावना था। तो पिताजी ने उसको बोला कि ठीक है बेटा, अब समावर्तन मुझे आने वाला है कि एक दो महीना पहला होने वाला है, तो मैं आपको लेकर जाऊँगा तो मैंने देखना, मैं किसे पहचानूंगा पापा, तो पहचानना मैं भी नहीं दिखाऊँ बेटा, लेकिन पता तो चल जाएगा। अरे उनको नहीं कौन पहचानेंगे, लाखों लोग तो उनके लिए भीड़ होता, महाराज के बाजू में जो बैठे होंगे उनसे पहचान लेंगे, वही होंगे ना बेटा, मैं देखूँ पापा मैं देख पाऊँगा ना, हाँ देख पाएगा, ले जाएंगे तुझे। इतने खुश हो गया कि इस दिन समावर्तन उत्सव होगा, पापा मुझे बोला मुझे साथ में ले जाऊंगा, मैं भेंट करूंगा, अभी देखा नहीं, इतने आनंद उत्सव हो उत्साह उनके मन में आ गया। तो उन्हें अपने काम से स्कूल से जाकर वापस आ करके अपने पर्सनल टाइम निकाल करके रात दिन लग करके उन्हें बोला कि अगर मैं मिलूंगा मेरे प्रभु को पहली बार, अपने मित्र को सबसे पहली बार मिलूंगा, तो खाली कैसे मिलूंगा, कुछ तो उपहार देना चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए, असली मित्र तभी है मिलने के, कुछ उपहार दे उनको, उनके समावर्तन उत्सव होगा, कितने लोगों को क्या क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कुछ दूंगा, मैं भी तो एक राजा के बेटा हूँ, मैं मेरे पापा के बेटा, मैं भी तो कुछ दूंगा उनको, क्या दूंगा उनके पास क्या ना होगा, और मैं भी किस चीज़ से क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने अपना लगा करके दो चीज़ गिफ्ट देने के लिए डिसाइड किया, वो उसको तैयारी करता था रात दिन, जानते थे क्या चीज़ देने लगा, क्योंकि जंगली लोग हैं, पशु वशु मार के वही फल मूल का वही तो उनका काम था। दो चीज़ अपने हाथ से बनाया, एक भगवान राम के लिए चमड़े की जूता, उन्हें हाथ से पशु मार का चमड़ा सुखा करके उसको टैनिंग करके उसे दबा करके सिखा कर सिलाई करके, और नाप तो साइज तो पता नहीं था लेकिन अंदाज लगा लिया, हम तो सेम उम्र है, मेरा पैर उनका पैर सेम होगा, तो अपने पैर की नाप से जूता बनाया, नया खुद सिलाई करके अपने हाथ से सिलाई करके बनाया, बड़े प्रेम से ध्यान से बनाया था, आपने पहन करके फिट करके रखा कि जो मेरे होता है तो उनको भी होगा, एक पेयर जूते बनाया चमड़े के, और एक जो बाण रखने के लिए तुणीर होता ना, कुईवर बोलते ना तुणीर, वो भी बस चर्म के उसको सुखा करके बड़े ट्रेनिंग करके वो बनाया था। ये दो चीज़ बोला, बाकी तो कोई फल मूल तो उनको कुछ कमी नहीं, मैं क्या लेकर जाऊंगा, सुख सक जाएगा इतना रहेगा नहीं, ये दोनों चीज़ परमानेंट रहेगा, कभी सड़ेगा नहीं, फेंकेंगे नहीं, कितने हमेशा रहने वाला है, ऐसी चीज़ें और हमेशा हम यूज भी करेंगे, दो बाकी कोई दो चीज़ यूज भी करें नहीं करें, लेकिन चप्पल उनके माप के वो यूज करेंगे, और तुणीर तो उनको यूज करना ही है, और प्योर इतने बढ़िया समृद्ध चर्म का मैंने बनाया, इतने हिसाब से कि बहुत अच्छा मुलायम है, मैंने पूरी ताकत बुद्धि लगा करके, जंगली लोग थे उनको इस सब एक कला में लोग एक्सपर्ट हुआ करते थे, इस कला में सीख करके वो दोनों चीज़ बनाया था, बड़े प्रेम से उन्होंने बना करके उस दोनों को तैयार करके, जिस दिन जाना होता था समापन उत्सव, गाँव से कई लोग सब जाते थे, वो भी चला था वहाँ से, यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर है मेरे ख्याल में, कि 150 किलोमीटर होगा, वहाँ से वो चल चल कर पैदल आया मिलने के लिए क्या समावर्तन उत्सव, इतनी भीड़ के अंदर देखा, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखेगा, अपने गांव से उनके पापा आगरा से लोगों के साथ आया, जब आ रहा था जितने निकट आ रहा था इतने उत्साह इतने बढ़ता था, इतने उमंग उसका बढ़ता था कि आज मैंने देखूंगा प्रभु कितने देखने के लिए होंगे, इतने गोरे गोरे होंगे, इतने सुंदर होंगे, ऐसे होंगे, सचमुच में मिलेंगे, मुझे बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, मैं तो प्रणाम कर लूँगा, बात कर लूँगा, देख तो लूँगा, स्वस्थता कर लूँगा, भेंट तो देख लूँगा, तो मुझे करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जरूर, क्यों नहीं करेंगे, इतने अच्छे तो होंगे, ऐसे मन में कितने विकल्प प्रकल्प कितने अच्छे विचार करते करते उन्होंने आया और जाकर पहुँचा कि समावर्तन उत्सव तो उस दिन शुरू हो ही रहा था। अब महाराज गुरुकुल जा चुके हैं, वहाँ से कुमार को लेकर के आएंगे, इसीलिए लख लख संख्या में भीड़ दोनों तरफ से कई किलोमीटर लंबा भीड़ जमा हुआ है। वो जाकर पहुँचे सुंदरपुर का, उन लोगों को कौन पूछेगा, वाले वीआईपी लोग फर्स्ट लाइन में है, सेकंड लाइन में जो और थोड़े लगे मगे वीआईपी है हैं, तो उसके बाद में पहले सुपर, फिर ये अपर, कोई कई ग्रेड के सब वीआईपी लोग, फिर उसके बाद में और को पहचाना कई लोग, फिर ऑर्डिनरी लोग, तो 10 लाइन के पीछे उनको खड़ा रहना पड़ा आम पब्लिक में। लेकिन इतने प्रबल इच्छा था उसका, वो तो हमेशा देखता था कब आएंगे, तब घड़ी थाने के करीब इतने अपने देखकर खड़ा था, और जब उस समय आया तब दूर से लोग सब खड़े हुए, बड़े शंख वादन करने लगे, करताल उल्लू ध्वनि करने लगे, कि महाराज अपने पुत्र के साथ आ ही रहे हैं, अभी आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं। देखा कि दूर से विशेष विशाल रथ में, सजा हुआ रथ में बहुत संतरी मंत्री यंत्री तंत्री सब बड़े 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 गाण के सज्जित होकर के महाराज के दोनों बाजू में और बड़े ऋषि मुनि वशिष्ठ आदि के बीच में चार कुमार बैठकर रथ जब दूर से आ रहा है, उनको संभला नहीं गया। जो 10th या 12th लाइन में खड़ा था, जब देखा कि रथ आने वाला है, लोग उच्चाट हो रहे हैं, वो इतने अधीर हो गया कि उनको संभला नहीं गया। वो कूद करके भीड़ में टूट कूद पड़ा, भीड़ के अंदर, और भीड़ को रोंधते हुए फाड़ते हुए, अरे कैसे लड़का कहाँ चला जा रहा है, कहाँ कहाँ पुलिस पीट रहे हैं, कोई लोग मार रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आज किसी को खेल नहीं उसका, वो क्या, कोई कोई मारे, कोई पीटे, कोई गाली दे, कुछ कहे, कोई शरीर के लिए ध्यान नहीं, ना कोई कान के लिए कोई बोलते है उसको ध्यान नहीं। लोगों के ऊपर टूटते हुए, गिरते हुए, रोनते हुए, फाड़ते हुए चला गया। इतने आज उत्साह था पागल, कोई रोके नहीं पाए। जैसे रथ पास में आ गया, पुलिस पीटते हुए, गाली देते हुए, बहुत हैवी कड़न होते हुए भी सीधा भीड़ को फाड़ करके कड़न लाइन कूद करके रथ में जम करके चढ़ी गया, चढ़ गया रथ में। कई बार मार पड़ा उसके ऊपर, डंडा पड़ा पर में सर में, लेकिन डंडा पड़ते हुए माना नहीं, कूद करके रथ में चढ़ गया। सिक्योरिटी पकड़ ली, अरे कहाँ से कहाँ गया ये जंगली लड़का, कहाँ से आ गया। जैसे सिक्योरिटी पकड़ रहा था, भगवान राम रथ से उठकर खड़े हो गए, हाथ की सर सिक्योरिटी शांत हो गए, युवराज क्या कर रहे हैं। जब भगवान राम रथ से उठ करके दो स्टेप आगे आ करके रथ को जब जंप कर रहा था, उसको स्वयं उठा लिए, उठा करके स्वयं अपने पास में लेकर बैठाए। सारे अपरिचित, फर्स्ट टाइम, ना भगवान राम उनको देखे थे, ना वो उनको देखा था, कोई नहीं देखे थे। जितने बड़ी गार्ड थे, इवन महाराज दशरथ भी देखते थे, रामभद्र ये कौन है, पिताजी ये मेरा मित्र है, आपका मित्र है, कब से मित्र हुआ, हमेशा मित्र है मेरा, ये अभी क्या थोड़ी, ये तो हमेशा के लिए मित्र है, जो हमेशा मित्र होते हैं उनके ऐसे ही होते हैं सब, वही मेरा मित्र है, मैं उनको जानता हूँ, ये हमारा परमानेंट फ्रेंड है। उनको ले करके आलिंगन करके आपने आसन से उस रथ में बैठा दिए, और पब्लिक तो देख करके तड़सता, जो उनको मार रहे थे, जो गाली दे रहे थे, बोले अरे लड़का को तो भगवान स्वयं आलिंगन करके अपने पास में बैठा है। जैसे बैठा है तो उन्होंने इतने धन्याति धन्य हो गया, तुरंत रोते रोते, कई मार खाया था पीठ में सर में, इधर उधर डंडा पड़ा था उसका, इतने खाते हुए कि उन्होंने गया था भगवान के आलिंगन प्राप्त किया, रो रो करके बोला मित्र आप मुझे स्वीकार किया मित्र के रूप में, मेरा सब कुछ आशा पूर्ण हो गया, मैं धन्य हुआ, मैं आपके लिए कुछ भेंट लाया अवश्य दीजिए। तो आपने जो दो भेंट निकाल के दिया, स्वयं अपने हाथ से जो चप्पल बनाया था उन्होंने अपने हाथ से बना करके भगवान के सोने चांदी से फिटिंग किया हुआ जो चप्पल था, आज महाराज दशरथ उन अपने बेटा का ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसको स्पेशल कपड़ा लगा था, टेलर तो नहीं के बनाए नहीं थे, तो ही जूता तो देंगे, सोने और हीरे जब मड़े हुए जूते दिए थे, लेकिन बोला मित्र मेरा ये चप्पल में हाथ से, मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, मेरे पैर के साथ में पहन कर देखा कि आपको फिटिंग हुआ, पहन कर देखो ना, पहनोगे ना। भगवान ने आपने स्वर्ण और चांदी और डायमंड रचित चप्पल को उतार कर फेंक दिए, उन्हीं की चप्पल को पहने, वो बिल्कुल भी फिटिंग था, साइज बिल्कुल फिट था, उसको पहने, और तुणीर जो बना कर लाया था तुणीर दिए उसको पहने, उन्हीं के सामने रथ के ऊपर ही इमीडिएट एक्सेप्ट किए भगवान स्वयं, दोनों को एक्सेप्ट किए, धूर धन्य हो गया भगवान, मिले उनके उपहार को स्वयं स्वीकार किए। भगवान बोले हमेशा उसी को मैंने पहनूंगा, ये आपके बनाया हुआ, आप प्रेम से बनाया उसको, इतने फिटिंग। तो इस प्रकार उनको प्राप्ति करके वो फिर जहाँ उनके गांव का लोग सब खड़े थे, उनको मेल करके कई भेंटों के साथ मित्र कहकर सभी के सामने पब्लिक में भेंट किए, उनको विदा किए थे। इस प्रकार वो जब राजा नहीं था, अभी स्टूडेंट लाइफ में भगवान राम से उनको पहली बार मिलन हुआ था, और पूरे पब्लिकली उनके साथ जिस प्रकार भगवान का मिलन हुआ था, जिस प्रकार आदान प्रदान हुआ था, वो सभी जानते हैं, इसलिए वाइडली ओपन था कि भगवान राम के जिगरी दोस्त फ्रेंड है बहुत, बाद में राजा बना, पहले तो राजा ही नहीं बना, तब से उनके राम के साथ मित्रता इस प्रकार था। ये भी अयोध्या में से घटना हुआ था कि राम के मित्र है एक जंगली कुमार, वो भी इधर है इस प्रकार। तो इस प्रकार भगवान यहाँ तक तो रहे, वनवास काल पर्यंत अयोध्या में रहे, अयोध्या वासियों को तन मन सब प्रसन्न कर रहे थे अपने उपस्थिति में। उसके बाद वन में जा कर के वनवासियों को प्रसन्न किए, उनके मनोवांछा पूर्ण किए और पूरे जगत उद्धार के लिए असुर विनाश किए। उसके बाद में 14 साल के बाद जो वापस आए, आ करके उनका वास्तविक राज्याभिषेक हुआ, उसका अभिषेक हुआ। उसके बाद राजा भगवान राम ने, सीता राम लखन ने अयोध्या की राजगद्दी पर रह करके जो असली राम राज्य के शासन शुरुआत किए, उसका वर्णन तो बहुत भारी वर्णन है राम राज्य का। उस राम राज्य के वर्णन में कई घटना होता कि श्री भगवान राम ने हमेशा, यद्यपि सर्वसमर्थ होते हुए भी, कितने उनके जो उपदेश मंडली होते थे, ब्राह्मण गण को रखते थे ऋषि मुनियों में, हमेशा उनके उपदेश में चलते थे। इस प्रकार से एक बार ऐसी घटना के आता है रामायण में वर्णन। एक समय एक ब्राह्मण आया, आकर के राजद्वार पर रोने लगा, उनका बेटा मर गया था। वो आकर चिल्लाने लगा, बोला इसे कैसे हो सकता है, बाप होते हुए बेटा कैसे मर सकता है, ये तो असंभव है। निश्चित रूप से ये राजा का कुछ पाप है, नहीं तो प्रजा को कैसे दुख कैसे मिलेगा, ऐसा अघटन नहीं हो सकता। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ, मुझे पता है कि मेरा कोई पाप नहीं है। अगर मेरा कोई पाप होता, पूर्व जन्म के पाप होता, तो मुझे अयोध्या में जन्म ही नहीं मिलता। अयोध्या में मुझे जन्म मिला है, यही अपने आप में महान प्रमाण है कि मैं निष्पाप हूँ। महापुण्यवान तब तो मुझे जन्म यहाँ मिला भगवत सानिध्य में, नहीं तो मुझे इसी जन्म कैसे मिला। तो मेरे तरफ से तो कोई पाप नहीं, ना मेरी पत्नी या कुछ नहीं, तो मेरे बेटा मृत्यु कैसे हो गया। निश्चित रूप से बाकी कोई कारण नहीं, एक ही कारण है, राजा का कुछ दोष है। तो इसलिए राजा को गाली देते हुए अयोध्या राज्य के राजधानी के राजनगर गेट पर आ सकते चिल्लाने लगा। तो ब्राह्मण है, भगवान ब्राह्मण को बहुत सम्मान करते थे, तो उन्होंने बुलाया उनको, राम के सामने उन्होंने खोटी खोटी सुनाया। तो उन्होंने सारे ऋषि मंडली को बुला करके पूछे, बोले क्या कारण हो सकता है। तब बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहे, महाराज उसका बेटा तो नहीं बनना चाहिए। क्यों मरा ना, एक शूद्र ने तपस्या कर रहा है जिसके कारण से इस प्रकार घटन घट रहा। तो भगवान बोले फिर शूद्र की तपस्या का अधिकार नहीं है, जिस काम को शूद्र का अधिकार है उसको ही करना चाहिए, अनधिकार चर्चा कर रहा है, अपना अधिकार से बाहर ये ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। बोले कहाँ पर, बोले आप जा करके ढूंढिए। तो भगवान राम तुरंत अपने विमान लेकर के गए और पता लगा लिए जंगल के अंदर एक निर्जन वन प्रदेश में शंबुक नाम के एक शूद्र उन्हें शीर्षासन करके घोर तप कर रहा था। और भगवान ने गए सीधा उसको जाकर गला काट दिया, उसका ऐसे वर्णन होता जब मार दिया उसको सीधा, तो थड़ तो कट गया, मर गया छट होते, तो जो सर कटा हुआ सर उनके तलवार में लगा, वो चिपक गया, छोड़ नहीं रहा था। वो पूछने लगा, बोला हे राजा राम, आप धर्म सम्राट, मेरा क्या दोष था, मुझे क्यों मार दिया, मुझे क्यों हत्या करना, तू क्यों तपस्या कर रहा था, तू शूद्र हो न, क्यों नहीं तपस्या कर सकता, आपने सलाहकार के केवल ब्राह्मण को रखा है, शूद्र को रखा है आपने एडवाइजरी बोर्ड में, आप एक तरफ पार्शियलिटी कर रहे, केवल उन्हीं से पूछा वही बता दिया, हमको आप मार दिया, तुमने क्यों मुझे मारा, मुझे उतर दो। इस प्रकार जब पूछा, भगवान ने तलवार के साथ वो थोड़ा फेंक दिया। भगवान जानते थे शूद्र के साथ युक्ति करना टाइम खराब है, लेकर के वापस आ गए। इस प्रकार भगवान राम के राज्य में ऐसे व्यवस्था था, कोई अगर नहीं चाहता है तबीयत खराब होगा ही नहीं, आपको चाहेंगे वो तबीयत खराब हो, लेकिन तभी ऐसे होता था कि लोग बोर हो जाते थे, अच्छा रहते रहते, बोले कोई थोड़ा खराब तो होना चाहिए यार, थोड़ा पेट बिगड़ना चाहिए, बुखार सब तो कुछ होना चाहिए, होता ही नहीं कुछ। तो इसलिए कभी कभी लोग इच्छा भी करते थे थोड़ा तबियत बिगड़ने के लिए, कोई उसका रस भी होता ना अलग से, थोड़ा टेस्ट लेने के लिए कि इससे तबियत खराब होने से होता है, थोड़ा कभी इच्छा नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं तबियत खराब। पाप का तो बात ही क्या है, बाकी इतने सुविधा था राम राज्य का, इतने महाप्रभाव था, कोई अघटन घट नहीं सकता था। बोला ब्राह्मण बेटा होता तो बेटा, ब्राह्मण पिता होता तो पुत्र नहीं मर सकता था। ऐसे राम राज्य में कोई गरीबी तो होता नहीं, इसमें उन्हें पूरे चतुर्पैर धर्म रह करके भगवान की उपस्थिति में इतने सुंदर कोई भूमि अपने समय पर फल सब देता था, बारिश अपने हिसाब से होता था, ऋतु परिवर्तन अपने समय से होता था, सीजन चेंज फिगर में बिल्कुल सब सभी प्रकार से प्रजाओं को जो सुख जो सोचे सकते हैं इसी प्रकार सुख सभी को प्राप्त हुआ करता था। इसीलिए राम राज्य का इतने प्राधान्य प्रशंसा है। तो लेकिन इस राम राज्य में एक ऐसे एक घटना रामायण के उत्तरकांड में प्राप्त मिलता है कि एक बार भगवान राम ने घोषणा किए थे कि मेरे कैपिटल में मेरे राज्य में प्रत्येक को सही प्रकार से शासन रूलिंग मिलना चाहिए। कोई ये नहीं सोचे कि मुझे मेरा बात सुनकर नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए बोले कोर्ट में शायद कोई आ भी नहीं पाए कुछ करें, तो इसलिए मुख्य राजद्वार से बाहर में बहुत बड़ा एक घंटा टांग दिए थे, बेल बहुत बड़ा घंटा टांगा हुआ था। और वो घंटा का रस्सी ऐसे पब्लिकली था, कोई भी आकर घंटा बजाएगा तो उसे पता चल गया कि वो राजा से मिलना चाहता है, उनको कुछ अपील है। तो ये सुविधा सबको अनाउंस कर दिया था। तो लेकिन घंटा कभी बजता ही नहीं था क्योंकि किसी का कोई अपील होता ही नहीं था। सभी इतने सुख शांति में थे, वर्षों तक हजारों साल से घंटा बजता ही नहीं था, किसी का कोई आवश्यकता नहीं पड़ता कोर्ट में आने के लिए, सब इतने सुख शांति में थे। लेकिन एक दिन हठात घंटा बजने लगा, भगवान राम चौंके, आज घंटा बज रहा है, क्या बात है लक्ष्मण, आज घंटा का आवाज आ रहा है, आप जाके देखो तो सही, कोई एक आरती आया है, किसका कोई तकलीफ है, मुझे बोलना चाहता है। लक्ष्मण गए जाकर देखे कोई नहीं है, भैया कोई नहीं, कोई नहीं है घंटा, तो फिर घंटा का आवाज आया, बोले घंटा बज रहा है, कोई नहीं, कहते कि जरूर कोई है, दोबारा ठीक से जाकर देखो। तो लक्ष्मण दोबारा गए, जाकर देखे एक कुत्ता खड़ा है, उसका सर से ब्लीडिंग हो रहा है, वो देखा कि वो दांत में रस्सी लेकर के इसे खींच रहा है, घंटा बजा रहा है। कुत्ता को पता था घंटा बजाने से भगवान सुनेंगे, घंटा बजा रहा था ना, तो मुझके उसका सर से ब्लीडिंग भी हो रहा था। तो कुत्ता को पूछा, अरे तुम क्या है, तो कुत्ता ने बात करने लगा लक्ष्मण कुमार से, बोले क्या दिक्कत है बताओ ना, मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं घंटा बजा मैं राजा से बताना हूँ, मेरा कष्ट मैं राजा को बताऊँगा, आपको क्यों बताऊँ ना, राजा ने मुझे भेजे हैं ना, आपको भेजे हैं, आप जाकर बता दो, इसीलिए भेजे कोई आरती है देखने के लिए, तेरा काम हो जाकर बताऊँ, मैं तुझे नहीं बताऊँ। लक्ष्मण लगे अच्छा बात है यार, बोलता नहीं, तो फिर चलो मेरे साथ ना, मैं जा भी नहीं सकता, क्यों मुझे बोलेगा नहीं, वो चलेगा भी नहीं ना, मैं आपको तो बोल नहीं सकता, मैं राजा को बोलूँगा ना, राजा को बोलना तो चल मेरे साथ ना, मैं चल भी नहीं सकता, बोले क्यों ना, मैं कुत्ता हूँ, राजभवन में प्रवेशाधिकार मेरा नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, कोई सभ्य मनुष्य भी नहीं हूँ, असभ्य मनुष्य नहीं, मैं तो बर्बर कुत्ता हूँ, सबसे नीच जोनी पशु, मैं नहीं जा सकता ना, फिर ना जाके प्रभु को बताए, आइदर खुद आए नहीं तो मुझे स्पेशल ऑर्डर पास करें कि मुझे जाने के लिए आदेश करें, मैं भी प्रवेश अधिकार प्राप्त करूं, मुझे देंगे तब तो मैं जाऊंगा, नहीं तो खुद को आना पड़ेगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लक्ष्मण चिढ़ गए, बोले बड़ा ढीठ कुत्ता है यार, बोलता भी नहीं सुनता नहीं, और सुनता नहीं तो लक्ष्मण को वापस आना पड़ा। यहाँ के बोले ये एक बदमाश कुत्ता है, वो घंटा बजा रहे, बोले फिर ना मुझे कुछ बताता भी नहीं, बोलता कि आपसे बात करेगा, अच्छा, और मैं उनको बुलाया चलो मेरे पास दादा से मिला देता हूँ, बोलता नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं कुत्ता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। वो बोला कि आइदर प्रभु राम स्वयं यहाँ आए, नहीं तो मेरे लिए स्पेशल आदेश जारी करे कि हाँ कुत्ता प्रवेश कर सकता है, विशेष अधिकार दे, तब मैं आ सकता हूँ राजभवन में। तो सारे सभासद बड़े बड़े ऋषि मुनि मंडली सब मंत्री संतरी बैठे, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए थे, वशिष्ठ राज आवाड़ा आदि ऋषि आदि बैठे हुए थे, सभी को देखे सब आश्चर्य हुए थे, कुत्ता, हाँ लक्ष्मण बोलते हैं। भगवान सबके ओर देख करके एक नज़र, बोले ठीक है मैं विशेष अधिकार देता हूँ, जाकर कुत्ता को बोलो इसे माई परमिशन सैंक्शन, वो आए राजभवन। तो लक्ष्मण ने स्पेशल ऑर्डर लेकर के गए, तो कुत्ता आया राजभवन में। तो राजभवन जैसा सब रीडिंग हो रहा था तो भगवान बोले कि वो राजभवन आए उनके स्पेशल सीट दो। कुत्ता को बैठने के लिए आसन प्रदान किया गया, वो बैठे, बैठ करके उनको फिर भगवान राम ने पूछे और कुत्ता महाशय बताए क्या आपकी समस्या है, मैं आपके कैसे सेवा कर सकूं। तो कुत्ता ने खड़े होकर के अभिवादन किया भगवान राम को, आपके जय हो, आप जैसे नाम ऐसे काम ऐसे है, मैं ही आशा कर रहा था आपको उपयुक्त न्याय, आप सचमुच न्यायमूर्ति हैं, आप मुझे आने का आदेश दिए इतने बड़े हैं। और आप सुनिए, मेरा जो तकलीफ है आप देख रहे हैं, मेरे शरीर से किस प्रकार रक्त प्रवाह हो रहा है और मैं इतनी दुखी हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं मर भी जाऊँगा, और इसके कारण यही है कि मैं आज सुबह सुबह ऐसे सपार्थ सिद्ध करके एक ब्राह्मण का नाम बताया। बोले एक ब्राह्मण है, उन्होंने मुझे आज सुबह मारा, मार करके इस प्रकार के घाव कर दिया, मेरे सर में ब्लीडिंग हो रहा है, आप देखिए, तो ये मेरा महादुख है, मैं मरने से पहले आपके पास दुख निवेदन करने आया हूँ और मैं नाम और आईडी एड्रेस से बता रहा हूँ, आप देखिए उनके समुचित न्याय कीजिए। आपने दुख से बताया, सभी ऐसे बोले बेचारा कुत्ता को क्यों मारा ब्राह्मण ने, बोला तपस्वी ब्राह्मण है और आपका अयोध्या के निवासी बैराग्य ब्राह्मण है और आज के दिन मारा, वो आज द्वादशी था, आज सुबह से मुझे मारा, ब्लीडिंग करने से किया। तो भगवान ने तुरंत जो कुत्ता ने जो एड्रेस बताया, नाम बताया, उसके समन जारी की, कोर्ट समन जारी हो गया, तो पुलिस जाकर पकड़ के ले आए उसको, उनका एड्रेस बताया उन्होंने, जो एड्रेस बताया वो एड्रेस में जाकर के वो था, उसको पकड़े, उसको लेकर के आए, सर्वात सिद्ध कोर्ट में पेश किया गया, राज दरबार में लाया गया। तो भगवान राम ने पूछे कि हे ब्राह्मण देव, आपने इस श्वान को आपने इस प्रकार मार के इस प्रकार रक्तातक किया? तो हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैंने मारा, क्यों आपने ऐसा किया उनको? तो उन्होंने अपने कारण बताया, बोला प्रभु देखिए काल निर्जला एकादशी था और मैं वैराग्य ब्राह्मण भीख मांग कर खाता हूँ, वो ऐसे तो कुछ मिलता नहीं मुझे भीख मांग कर, जो मिलता खाता हूँ, काल तो ऐसे एकादशी था और निर्जला व्रत था, हाँ मैंने पूरा निर्जला व्रत रखा था, और कितना गर्मी होता है पता है आपको, वो जून महीने में आता है ना, नहीं इतने गर्मी में निर्जला व्रत किया और आज सुबह सुबह द्वादशी व्रत तोड़ने के समय के अनुसार मैं बोला जब भिक्षा मांग कर लाऊंगा, मेरे को कुछ है नहीं बनाने के लिए, जो भिक्षा में कुछ अगर अच्छा चीज़ मिल जाए द्वादशी पारायण कर करूँगा, भोग में मेरा खूब पीड़ा हो रहा था, तो सुबह सुबह उठ करके मैंने भिक्षा मांगने के लिए चला पड़ा, चल पड़ा, तो ये कुत्ता ने सुबह सुबह मेरे पीछे चला, मैं इसको कितने बोल रहा था हट यहाँ से, हट नहीं जा रहा था, मेरे अपने पीछा कर रहा था, और सौभाग्य से मुझे द्वादशी का सुबह सुबह एक कई गृहपत्नी ने, कोई ब्राह्मण पत्नी ने मुझे बहुत बढ़िया पकवान दिया खाने के लिए, भिक्षा मुझे मिला, हलवा पूरी और समोसा आदि मिला मुझे, तो मैंने उसको जब मुझे दिए मुझे सारे भक्ख्य तपे खाने के लिए, मैं उसको अपने कमंडल में डोलू में भरा और कुत्ता सब देख रहा था खड़े होकर, मैं भगा रहा था लेकिन दूर से देख रहा था सब, और जब मैं लेकर के आया मेरे मन इतने खुश हो रहा था, अब जाकर पहुंच करके सबको खाऊंगा, एक दाना भी नहीं छोड़ूंगा, आज तो बदला लूंगा एकादशी का, जितने माल मिला सब खाऊंगा, वैसे जल्दी जल्दी से आ रहा था लेकिन मेरे आगे पीछे घूम रहा था, मैं इसको हमेशा भगा, हट यहाँ से हट, नहीं जा रहा था, और मैं लाया और भूख तो प्रबल मुझे लग रहा था, और मैं छोटा सा कुटिया मेरे था वहाँ रख करके गया, थोड़ा लोटा से पानी लेकर आऊँ, बैठ कर खाऊँ, बदला लूँ, मैं गया एक मिनट के अंदर वो गेट पर खड़ा था, मैं भूल गया था गेट बंद करने के लिए, ये मेरी गलती थी, मैं डोलू रख दिया लेकर के और गेट बंद करने भूख गया, क्योंकि इतनी भूख था मुझे, बोले जल्दी पानी लोटा लाऊँ खाऊँ, इतने में अंदर चला गया पानी लोटा लाने के, पानी लोटा ला करके आऊँ तो देखूँ तो अंदर घुस करके मुँह डाल और खाना शुरू कर चुका, इतने में अब मैं देखूँ तो वज्रा घात अरे काल से पूरा निकला, फास्टिंग मांग करके लाता खाने के लिए पानी लोटा हाथ पड़ो कुत्ता खा रहा मेरे साथ, इतनी भूख में इतने क्रोध आया मेरे डंडा लेकर के मारा मेरे सामने, तो मेरे खा रहा है बदमाश, तो उसको मेरे सामने सर में पिटा उनको, तो सर फट गया, ब्लीडिंग हो रहा है। तो महाराज अब देखे मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो क्रोध होना ही चाहिए, पूरे 24 घंटा से फास्टिंग था, बड़े मुश्किल से मांग करके माल लाया था मैं खाने के लिए, और मेरे सामने ही से खा गया, मेरे से कैसे खा सकता, इसी में से क्रोध है, इसने मार दिया। आप विचार कीजिए, अगर मेरा गलती है मुझे अब दंड दीजिए, मैं स्वीकार करूँ कि जो किया हूँ सच बताता हूँ। क्योंकि तब जमाने में सत्य बता रहे थे उन्होंने सत्याचारी थे। तो भगवान राम ने उनके बात सुन करके जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर बड़े बड़े ऋषि मंडली गुरु गुरुवर्य से बैठे थे उनकी ओर देखे, बोले आप लोग का मतामत क्या है, ये सीरियस मामला है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बोले महाराज ये तो निश्चित है शास्त्र अनुसार ब्राह्मण अवध्य होते हैं, यद्यपि उन्होंने इतने बड़ी आघात किया अटेम्प्ट टू मर्डर केस, मर्डर करना और मारने के लिए अटेम्प्ट करना ये भी सेम 302 दफा है, कोई लहर तो नहीं ना आप मुझ में, तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी एज गुड एज मर्डर। तो बोले वो तो इतने जोर से मारा है तो मर ही जाएगा, तो अटेम्प्ट टू मर्डर के दिन 302 दफा लग ही रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ब्राह्मण है फिर वैरागी ब्राह्मण है तो इसलिए उसको शारीरिक दंड नहीं दे सकते, ब्राह्मण फिजिकल पनिशमेंट के लिए लायक नहीं तो उसको तो दंड नहीं जा सकता अवध्य है वो। फिर क्या दंड दिया जा सकता है, और से परामर्श हो रहा कोई परामर्श डिसीजन होते कुत्ता बोल रहा है और वो कई लोग बोले ये बेचारा उनका उचित था, वो बेचारा पूरा दिन फास्टिंग रखा था भिक्षा मांगकर खाता था, वो इतने 24 घंटे फास्टिंग के बाद भिक्षा मांगकर लाया था कुत्ता उनको क्यों उस घर में घुसकर खा गया, और कोई भी क्रोध होगा मारेगा। तो कुत्ता ने हाथ उठा बोले सर ऑब्जेक्शन मुझे बोलने के लिए दिया जाए। भगवान बोले बोले प्रभु सुनिए आप मैं कुत्ता हूँ, आप में से कोई कुत्ते लायक में है ही नहीं, कुत्ता के जो स्वभाव के बारे में आपको पता होगा वो ब्राह्मण है उनको तो लोग भीख देते हैं, मुझे कोई भीख देते हैं ना, मुझे कोई फिस्ट में खाने के लिए बुलाते हैं, मेरा तो बुरी हाल है ना, मुझे कोई खाने मिलता है ना, मैं मांग भी सकता हूँ ना कभी जाऊँगा कोई मुझे देंगे, मैं तो कोई कुछ झूठन मिल जाए कोई कुछ फेंक दे कुछ करे उसी के ऊपर जीता हूँ, मुझे तो भीख मांगने पर भी नहीं मिलता है। वो बोलता है एक निर्जला फास्टिंग, अरे मैं कितने फास्टिंग कर चुका हूँ, एक फास्टिंग कैसे कहता मैं भी कितने फास्टिंग किया हूँ, तो उनको भूख तड़पता मुझे भी क्या भूख नहीं लग रहा था, मुझे भी तो भूख तड़प रहा है, मैं कितने कितने घूम रहा हूँ खाने के लिए, मामला तो कुछ नहीं कहीं भी कुछ मिल जाए मिलता भी नहीं। बोले आपके राज्य में तो ऐसे लोग किसी का अपमृत्यु होता नहीं, ऐसे नहीं मरते हैं, तो मैं लाश भी नहीं मिलता मुझे खाने के लिए कहाँ खाऊं, और कोई सदाचारी सब अच्छे बड़े बड़े पकवान खाते हैं को फेंकते भी नहीं, फेंक देते मैं खाऊं को फेंकते भी नहीं, तो हमारा तो परिक्षण इस प्रकार में रहता हूँ हमेशा भूखते तड़पता रहता हूँ, और मेरा भी कल फास्टिंग था मैं भी कुछ खाने खाना नहीं मिला था, तो वो जैसे गया भिक्षा मांगने के लिए मैंने सोच लिया कि ब्राह्मण जा रहा है उसको जरूर कहीं ना कहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण है ब्राह्मण भिक्षा करेगा तो लोग को देंगे, बोले देंगे तो मैं उनका पीछे पीछे जाऊँगा तो शायद एक आध टुकड़ा मुझे दे देगा कोई, बोलो वो ना कोई घर वाले दिए ना वो दे रहा था, मैं भी भूखे तड़प रहा था और आया, बोला तभी भी मेरे नियम पालन किया था, मैं उनके पीछे पीछे आया उनके गाली और फटकार खाते हुए आ करके घर के सामने दरवाजे पर मैं बैठा रहा नजर लगाकर बैठा, मैं अंदर नहीं जा रहा था, अगर दरवाजा बंद कर देता तब मैं जा नहीं सकता था, अगर वो प्रेजेंट होता तब मैं जा नहीं सकता था, लेकिन वो ऑप्शेंट दरवाजा खोला और खाने के द्रव्य रखा हुआ है सामने, इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, दरवाजा बंद नहीं किया था और स्वयं वो साथ रहा नहीं और खाने के द्रव्य सामने रख दिया और मैं भूख में तड़प रहा था, मुझे क्या करना था आप ही बताइए, तो मैंने जो करना था सो किया मेरे बिहार नियम हट गया, मैं किया और किया तो आया आप मुझे सिपीटा मुझे मार देता आप क्या इसी प्रकार से मुझे आघात दंड दिया, अभी आप विचार कीजिए। तो कुत्ता के इस प्रकार बात सुन करके सारे मंडली बड़े ऐसे अधड़ मन में फंसे कि बाकायदा वो भी सही बात कह रहा है, वो बात तो सही है, अभी कैसे डिसीजन करें किसको क्या दंड दिया जाए, सभी को एक एक करके पूछे, सब इस बोलते हैं कि ये नहीं करना, मैंने कोई निश्चित न्याय नहीं कर पाया, सब छोड़े कि आप न्यायमूर्ति प्रभु आप ही डिसीजन कीजिए, तो बड़े सीरियस मामला है बस क्या डिसीजन किया जाए, तो सब इस प्रकार निश्चित छोड़ते। भगवान ने कुत्ते की ओर देखे बोले स्वान आपको कुछ कहना है, तो स्वान खड़े होकर बोला है प्रभु ये सभी ऋषि मंडली न्यायमूर्ति भद्र मंडली के सामने अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं कुछ कहूँ ना, हाँ बोलिए ना, अगर सचमुच मेरे मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं मैं अर्जी हूं, मैंने खुद अभियोग किया हूं, मुझे इतने बड़े दंड मिला है, लहूलुहान हो रहा हूं, ब्लीडिंग हो रहा है कि कब मैं मर जाऊं, और इसी अवस्था में मेरे जो अंतिम इच्छा है अगर आप उसको पूर्ति करना चाहते हैं और जो दंड उनको देने के लिए मैं चाहता हूं, अगर वो दंड आप उनको देंगे, मेरे कहने का बात अगर आप पालन करेंगे तब मैं कुछ बोलूं, आप अगर आदेश करें कि सत्य करेंगे कि हाँ मैं करूंगा तब मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं मैं चुप बैठूंगा क्यों बोलूं। स्वामी कुत्ता ने ही बात कहा तो सारे ऋषि मंडल बोले ये कैसे हो सकता, वो बोलेगा मार दो कर ब्राह्मण मार देंगे, ऐसी बात ऐसे कैसे हो सकता। कई लोग बोलते हैं अरे सुनना तो सुनना चाहिए, क्या चाहना चाहता है, क्या जानना चाहता है, बोलते क्या बोलेगा, वही बोलेगा जैसे मार निकले बोलेगा, वो क्या बोलेगा, ऐसे कैसे हो सकता। कई ब्राह्मण मंडल थे सब ऐसे आनेकानी करने लगे, अंततः भगवान राम सबसे इधर उधर देख करके बोले ठीक मैं सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा, आपका क्या अंतिम इच्छा कहिए, आपको जिस प्रकार ब्लीडिंग हो रहा है कुछ क्षण के बाद शायद आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे, अब मर जाएंगे, मरेंगे सही मेरे सामने मेरे दरबार में मरेंगे, आपका तो उद्धार होगा ही, लेकिन आपका अंतिम इच्छा क्या है, जो आप चाहें न मेरे इच्छा के अनुसार दंड विधान करेंगे ब्राह्मण, न अवश्य दंडित करूँगा। ब्राह्मण भी डर गया, पता नहीं क्या मुझे मारा, मुझे इसे मारने के लिए बोलेगा क्या कहेगा, वो भी डर गया, सारे ऋषि मंडली ब्राह्मण सब डर गए, भगवान ने प्रतिज्ञा तो कर दी उनके सामने, हाँ मैं वही करूँगा जो आप बोलेंगे, जो दंड विधान करूँगे वही दंड विधान करूँगा। जब भगवान राजी हो गए, कई लोग बोले प्रभु ये कैसे कैसे, नहीं नहीं आप लोग ने कुछ बोले नहीं, मैं तो मेरे न्याय दिया, वो चाहता है वो मुमूर्षु अवस्था में है मर रहा है अभी, उनका अंतिम इच्छा पूर्ण करेगा, मेरा भी धर्म है, बोलिए निर्भय मैं वही अवश्य पालन करूँगा। भगवान राम से प्रतिज्ञा प्राप्त करके तो कुत्ता उठ करके बोलने लगा, बोला हे प्रभु राजा राम आपके जय हो, आप ही केवल इस प्रकार से प्रतिज्ञा कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, सभी को संतुष्टि कर सकते हैं, केवल आप ही समर्थ हैं, तो मैं बताता हूँ सुनिए, मुझे अगर प्रसन्न करना चाहते हो, इस ब्राह्मण कुमार को उचित दंड दे करके उनको भी सुधारना चाहते हो तो मेरे ही इच्छा है, उसको अभी अभी एक हाथी बुलाए, गजदंत हाथी बुलाए, दंता हाथी, उसको सोने चांदी से सजाइए, सजा करके उसके ऊपर विशेष वस्त्र आदि भूषण आभूषण राजे के आभूषण पहना करके इस ब्राह्मण कुमार को उसके ऊपर बैठाइए, सोने की पगड़ी बांधिए, बांध करके आज ही उनको प्रोसेशन बाजे गाजे के साथ ले जाइए, यहाँ से जो कलंजर मठ है सबसे विशाल सबसे धनाढ्य मठ है सबसे बड़ा मठ है, इस मठ के मुख्य महंत सुश्री महंत कहते हैं, श्री महंत पद्मी से आज उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाए। इसी को सुन करते हो ब्राह्मण का आंख खुल गया है, ये इतने बड़े अपॉइंटमेंट इतने बड़े पोस्ट सभी सुने बोले ये कौन सा दंड है, ये क्या आ जाए, भगवान नाम प्रतिज्ञा किए थे, एक कुत्ता ऐसे कह करके चुप हो गया बैठ गया, तो भगवान ने अपने वचन के अनुसार बोले ठीक है मैं अवश्य ही करूँगा, सभी खुश हो गए, हाउ कैन इट बी पनिशमेंट, पनिशमेंट हो कैसे सकता, कैसे हो सकता है, कोई समझ नहीं सकता। भगवान राम को तत्क्षणात काम किए, बड़े दंत हाथी बुला गया, उसे खूब सजाया गया, उसके बाद ब्राह्मण को बुला करके खूब उनको डेकोरेशन करके सोने की पगड़ी आदि बांध करके श्री महंत मठाधीश करके घोषणा करके बाजे गाजे पता के नारेबाजी के साथ लेकर गए कलंजर मठ में दी हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट श्री महंत करके उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया, राजा की तरफ से डायरेक्ट पोस्ट अपॉइंटमेंट दिया गया उनको, तो बस मस्त होकर महंत श्री महंत होकर बैठा और सारे लोग आए वापस आकर, लेकिन सभी के मन में ये प्रश्न प्रभु ये कोई दंड है, ये तो महापुरस्कार है, कई जन्म से इतने बड़े पोस्ट मिल गया, आजकल तो ये छोटे मोटे नौकरी के लिए लोग कितने क्या क्या करते हैं, ये इतने बड़े पोस्ट हो IAS IPS भी नहीं होगा, इतने बड़े श्री महंत पोस्ट मारने से अगर यही करने से होता तो हम भी कुत्ते को काल मारते हैं, हम भूल गए हम दो चार डंडा मार जाते, दो चार पोस्ट मिल जाते जब एक डंडा कुत्ता को मारने से इतने बड़े पोस्ट मिलता है तो हम तो हमको पता होता हम कितनी बार मारते डेली मारते कुत्ते को ऐसे बड़े भगवान बोले ऐसे नहीं है, ये दंड मैं नहीं दिया, वो कुत्ते ने देता है, हर कुत्ता देगा कि नहीं क्या पता, ये कुत्ता ही ऐसा है उसको मारा मर रहा है लेकिन उनको ये दंडा उन्होंने स्वीकार किया, आप मैं थोड़ी दिया, आपने सुने ना हमको आश्चर्य लग रहा रहस्य क्या है, रहस्य मुझे क्यों पूछ रहा है, उसको पूछो वो मरने से पहले उनको पूछ लो बता देगा क्या रहस्य। तो सारे दिग्गज मंडली सारे मुनि ऋषि ब्राह्मण मंडली भगवान के समक्ष में उस कुत्ता को घेर गए, पूछे बोले हे स्वामी बताइए क्या रहस्य, ये तो इतने बड़े पोस्ट मिला उनको, ये कोई दंड कैसे, आपको मारा, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, मर जाएगा आपने, तो उनको ऐसे दंड आपने क्यों चाहा मरने से पहले, एक इच्छा क्यों कहा। तो उन्होंने बोला मुझे क्षमा करे हे प्रभु राम, हे सब भद्र मंडली विज्ञ मंडली, मुझे वही लगा कि सबसे उचित दंड उनके लिए हुई। बोले क्यों, क्योंकि मैं ये कुत्ता लाइफ से ये पिछले जन्म में मैं श्री महंत था कलंजर मठ के, इस कुत्ता बनने से पहले आई वॉज द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ दैट मठ, मैं श्री महंत था कलंजर मठ के सबसे विख्यात प्रसिद्ध मठ का मैं श्री महंत था, और मुझे पता है मैं कितने ढंग से अच्छे प्रकार से सब कर रहा था, पालना सब कुछ नियम से कर रहा था, लेकिन मेरे अज्ञात सार में कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ जिनके कारण मुझे ऐसे दयनीय जन्म प्राप्त हुआ, जो ऐसे ही मैं आपको बताया कैसे विचरण करता हूँ, सब छीछी मार मार थुक थुक कर रहे हैं, कितने बार भूखा रहना पड़ता है, मार खाना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, फटकार सुनना पड़ता है, पेट नहीं भरता है, और इसी अवस्था में इस प्रकार दंड मुझे किया। और ये ब्राह्मण है, मैं तो कुत्ता, और इतने क्रोधी है युवक ब्राह्मण बैरागी, इतने क्रोधी है, फिर नहीं करना चाहिए, ये सामान्य मैं भी भूखा था, खाया, मुझे इतने बड़े दंड दिया, अगर वो इस पोस्ट में जाएगा तो कितने गड़बड़ करेगा, फिर उसको क्या दंड मिलेगा, ये तो प्रभु आपके प्रकृति के नियम ही दंड करेगा, मैं क्यों करूँ, जिस प्रकृति के नियम ने मुझे ऐसे किया उनको उपयुक्त दंड वही करेगा, इसीलिए मैं पोस्ट में उनको देने के लिए बैठाने के लिए बैठा है। ये सब सुन करके सब भाई अलग हो गए रियली। तब कुत्ता मरने से पहले बोला इसीलिए कहीं कोई जहाँ संत मंडली रहते होंगे, कोई संत समाज का और गो समाज का, विशेष करके दोनों का नाम बताया, कोई संत समाज का श्री महंत होना और कोई गौशाला का अधिकारी होना बहुत खतरनाक समस्या है, क्योंकि ये दोनों बोलते नहीं हैं, गौ माता उनको कष्ट दो बोल नहीं सकता, बोलेगी नहीं, कंप्लेन करेगी नहीं, और संत का भी नेचर ही होता है, वो सहन कर लेंगे बोलेंगे नहीं, दोनों ही सहन करेंगे बोलेंगे नहीं, और जो सहन कर लेते बोलेंगे नहीं वही बड़े खतरनाक है, उनके परिणाम बहुत खतरनाक होते जिसमें राहु, तो इसलिए इस रहना बहुत सतर्कता से रहना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़े को बोलता है तो फिर उनके से कोई दिक्कत किसी कष्ट हुआ अगर अब चिल्लाया बोल दिया तो फिर गया उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सारे कष्ट सहा कुछ बोला नहीं ठीक है बोल दिया तो सबसे डेंजर होगी, किसके संभालना उसको सांत्वन बहुत खतरनाक है। तो कुत्ता ने इस बात कह करके अपने देह रखा और भगवान से, ये भगवान के आदर्श राज्य के एक कुत्ते की न्याय के भी उन्होंने सुने और उसके हिसाब से न्याय देते थे, ये भगवान राम राज्य की महान आदर्श था। राजा राम की, आपके समय भी ठीक हो चुका है, कहाँ गए अधिपति, कहाँ गए, टाइम इज ओके, ओके तो समय भी काल भी पूरा हो चुका है, तो इसलिए अभी हमको विदा दीजिए, अभी आपके सामने रंगमंच किया जाएगा नहीं, जय श्री राम,
जय श्री राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।